اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے بھائی، شرح میں دیکھیے، قوله القیاس الی آخره، القیاس کما ینقسم باعتبار الهیئة والصورة الی الاستثنائی والاقترانی باقسامهما، كذلك ينقسم باعتبار المادة الی الصناعات الخمس، اعنی البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. گزشتہ سبق میں ہم قیاس کی پانچ قسمیں پڑھ رہے تھے بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس جو ہے وہ اپنے مقدمات یا یوں کہیں اپنے مادے کے اعتبار سے پانچ قسم پر ہے، اور ان کو صناعات خمسہ کہتے ہیں، اور یہ نہایت قیمتی بحث ہے منطق کی بھائی. صناعات خمسہ انہوں نے بتلایا کہ قیاس جو ہے وہ پانچ قسم پر ہے اور ان کو صناعات خمسہ کہتے ہیں، اور وہ قیاس جو ہیں وہ پانچ قسمیں، قیاس برہانی ہے، قیاس جدلی ہے، قیاس خطابی ہے، قیاس شعری ہے، اور قیاس سفسطی ہے بھائی. قیاس برہانی وہ ہے جس کے دونوں مقدمات یقینی ہوں، اور یقینیات انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ اصول یقینیات چھ ہیں بھائی، یعنی اصول بدیہیات کتنے ہیں؟ چھ. یہ چھ چیزیں یہ بدیہی ہیں بھائی، بدیہی ہیں، اور یہ ہیں اولیات اور مشاہدات، تجربیات، حدسیات، متواترات اور فطریات بھائی. یہ چھ قسمیں ہیں. ان میں سے اولیات جو ہے، اولیات وہ بدیہیات جن میں آپ موضوع اور محمول کا تصور کریں اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کریں تو آپ کو اس کا یقین آ جائے، ذہن اس کو مان لے، اس کا اعتقاد کر لے، وہاں کسی واسطے اور دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے. جبکہ فطریات جو ہے ان میں واسطے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں صرف موضوع اور محمول کا تصور اور نسبت کا تصور جو ہے وہ یقین کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ دلیل جو ہے اس قضیے سے جدا نہیں ہوتی. جو ہی وہ قضیہ ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی اس کی دلیل بھی خود بخود آ جاتی ہے، اس لیے ان کو فطریات کہتے ہیں. جیسے چار جفت ہے یا چھ جفت ہے یا آٹھ جفت ہے یا پانچ جو ہے طاق ہے یا سات جو ہے یہ طاق ہے، تو یہ سب فطریات ہیں بھائی. تو صرف اولیات جو ہے یہ پہلی قسم ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، جبکہ باقی پانچ قسمیں جو بدیہیات اور یقینیات کی ہیں ان میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. مشاہدات جو ہے ان کے اندر واسطہ جو ہے وہ حصے ظاہری یا حصے باطنی ہوتی ہے، حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ. حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہو ان کو محسوسات اور حسیات کہتے ہیں، اور حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہو ان کو وجدانیات کہتے ہیں، وجدانیات. اس کے بعد اگلی قسم تھی تجربیات. تجربیات وہ ہیں، وہ قضایا ہیں جن پر یقین کرنے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بعض اوقات کوئی چیز کا تجربہ کرتے ہیں، دو چار دفعہ آپ کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، مثلا کوئی چیز آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا کوئی نقصان ہوا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین چار دفعہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے کھانے سے یا تو یہ فائدہ ہے یا یہ نقصان ہے بھائی. تو دیکھو ذہن نے یقین کر لیا اور اس پر آپ نے کلی حکم لگا دیا کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے یا اس چیز کا یہ نقصان ہے، تو ذہن نے یقین کر لیا، اس کو مان لیا، اور واسطہ کیا بنا؟ تجربہ واسطہ بنا بھائی. تجربتن بھائی، عربی لفظ میں را کے نیچے زیر ہے، اگرچہ اردو میں جیم پر فتحہ ہے اور را ساکن ہے، تجربہ. چوتھی قسم جو تھی وہ حدسیات ہے بھائی، اور حدسیات وہ ہیں جن میں حدس جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے اور واسطہ بنتا ہے یقین کرنے کا. بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا تیز ذہن دیا ہوتا ہے، وہ مبادی سے ایک دم نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس قوت کا نام حدث ہے بھائی، حدث. اور نیز تام لوگوں کو بھی یہ حدث حاصل ہو جاتا ہے لیکن محنت اور شوق سے. جب آپ ایک چیز میں محنت کرتے ہیں اور شوق ہوتا ہے تو بالآخر اس فن میں، اس چیز میں آپ کو حدث हासिल हो जाता है। जैसे उसकी वाजह मिसाल है, आप इबारत पढ़ते हैं, देखो आप जो जो इबारत पढ़ रहे होते हैं वो इबारत आपको हिफज नहीं है, आपको नहीं पता कहां रफा पढ़ना है, कहां नसब, कहां जर, लेकिन जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं आपका जहन आपको बताता जा रहा है और दलील साथ आती जा रही है, बगैर दलील के आप नहीं पढ़ रहे भाई, उसी लम्हे में जहन आपको बताता जा रहा है ये फाइल है और फाइल मरफू होता है लिहाजा इस पर रफा पढ़ना, ये मफूल है मफूल मनसूब होता है इस पर नसब पढ़ना, ये मजरूर है इस पर हर्फ जर दाखिल है, ये मजरूर है और इस पर जर पढ़ते हैं, देखा वो आपको जहन बताता चला जा रहा है, लेकिन ये इतनी रफ्तार से अमल होता है कि आपको भी अंदाजा नहीं होता भाई, तो इसको हदस कहते हैं। और पांचवीं किस्म है यकीनियात की मुतवातिरात, जिनमें किसी दूसरे से कोई बात सुनी और जहन उसका यकीन कर लेता है, लेकिन हर सुनना नहीं बल्कि बताने वाली जमात इतनी बड़ी हो, इतने ज्यादा लोग हों कि उनका इज्तिमा अलल किज़ब को अकल महाल समझे कि इतने लोग झूठ पर जमा नहीं हो सकते, जब इतने लोग एक बात कर रहे हैं तो यकीनन बात ऐसी ही है। तो यहां जो है वासिता वो तवातुर है, इस तवातुर की वजह से जहन यकीन कर लेता है, एक या दो या चार बताएं तो जहन यकीन नहीं करता भाई जी। और फितरियात, फितरियात हमने कर ली, तो ये कुल छह किस्में हो गई यकीनियात की, अव्वलियात, मुशाहदात, तजरिबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात। और ये जो कयास बुरहानी है वो हमेशा इन्हीं से मुरक्कब होगा। उसके बाद फिर इन्होंने आपको मजीद तफसील बतलाई थी कि कयास बुरहानी दो किस्म पर है, एक को कयास इन्नी कहते हैं या दलील इन्नी कहते हैं और दूसरे को दलील लिम्मी। मैंने बतलाया था ये दलील लिम्मी, ये लिम्मुन, लिम्मुन का माना है इल्लत और ये लिमा से अखज किया गया है, लिमा भी किसी चीज के इल्लत पूछने के लिए सवाल किया जाता है लिमा के साथ कि लिमा हाजा, ऐसा क्यों है, ये क्यों है। अगर कयास बुरहानी जो है वो इल्लत पर दलालत करे, यानी अगर इल्लत के जरिए मालूल पर इस्तेदलाल किया जाए तो इसको दलील लिम्मी कहते हैं, और अगर मालूल के जरिए इल्लत पर इस्तेदलाल किया जाए तो इसको दलील इन्नी कहते हैं। इन्नुन जो है ये इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल जो है उससे अखज करके बनाया गया है, और जैसे वो इन्ना जो है यकीन पर दलालत करता है यानी वजूद और सबूत पर, इन्ना जैदन कायमुन, क्या माना कि जैद के लिए कयाम साबित है, तो ये इन्ना वजूद और सबूत पर दलालत करता है, तो इसी से दलील इन्नी बना लिया। ये दलील भी क्या है, एक चीज के वजूद और सबूत पर दलालत करती है कि ये चीज है तो ये दूसरी चीज भी है, ये इल्लत पर दलालत नहीं करती। दलील लिम्मी वो भी एक चीज के सबूत पर दलालत कर रही है लेकिन वो बतला रही है कि ये चीज इल्लत है, जबकि दलील इन्नी में भी एक चीज का सबूत होता है लेकिन वहां वो चीज वाकई के अंदर उसकी इल्लत नहीं होती। फर्क समझ में आ रहा है भाई। तो दलील लिम्मी में चूंकि इल्लत के जरिए इस्तेदलाल होता है मालूल पर, और इसलिए उसको दलील लिम्मी कहते हैं। और मैंने बतलाया था कि ये आप कियास बनाए तो उसमें हद औसत पर गौर कर लिया करें, ये जो हद औसत है ना ये वासिता बनता है असगर को अकबर से मिलाने का। असगर तो सुगरा में था और अकबर कुबरा में था, असगर नतीजे का मौजू और अकबर नतीजे का महमूल, तो कियास के दो मुकदमों के अंदर असगर जो था वो सुगरा में था और अकबर कुबरा में था, इन दोनों को मिलाया किसने, वासिता क्या बना बीच में, वो हद औसत है। अगर ये हद औसत वाकई के अंदर इल्लत हो तो फिर इसको दलील लिम्मी कहेंगे, और अगर वाकई में ये इल्लत ना हो तो इसको दलील इन्नी कहेंगे। जैसे मसलन मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और जब सूरज निकला होता है तो दिन मौजूद होता है, नतीजा क्या आया, इस वक्त दिन मौजूद है। अब यहां हद औसत क्या है, सूरज का निकलना, तो उसको इल्लत बनाया जहन में, इल्लत बनाया जहन में। देखो ये जो हद औसत है ये इल्लत है, ये सबब है, ये पहुंचाने वाली है नतीजे तक, तो यहां हद औसत क्या है, सूरज का निकलना, यानी जहन में सूरज का निकलना इल्लत है दिन के होने के लिए। आपने क्या कहा, इस वक्त सूरज निकला हुआ है और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है, नतीजा क्या आया, इस वक्त दिन है। देखो इस वक्त दिन होने का हुक्म लगाया और किसकी वजह से, सूरज के निकलने की वजह से, तो जहन में सूरज के निकलने को इल्लत करार दिया आपने दिन के होने के लिए, और वाकई में भी सूरज का निकलना इल्लत है दिन के होने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, दलील लिम्मी। और अगर वाकई में ऐसा ना हो तो उसको दलील इन्नी कहेंगे, जैसे मैं कहता हूं इस वक्त दिन है, और जब दिन होता है तो सूरज निकला होता है, नतीजा क्या निकला, इस वक्त सूरज निकला हुआ है। तो देखो इल्लत किसको बनाया, हद औसत क्या है, दिन का निकलना, तो गोया जहन में दिन के होने की वजह से इस वक्त सूरज निकला हुआ है, दिन के होने को आपने इल्लत बनाया जहन के अंदर, किस चीज के लिए, सूरज के निकलने के लिए, और वाकई में ऐसा नहीं है, वाकई के अंदर तो दिन सूरज के लिए इल्लत नहीं है बल्कि सूरज दिन के लिए इल्लत है। तो इसको क्या कहेंगे, दलीले इन्नी कहेंगे भाई। और फिर उसके बाद इन्होंने कियास की बाकी किस्में आपको बतलाई थी कि कियास की दूसरी किस्म जो है कियास जदली है, जदल का माना है बहस करना, मुनाजरा करना, तो चूंकि ये बहस मुबाहसे के अंदर ये कियास इस्तेमाल होता है इसलिए इसको कियास जदली कहते हैं, और ये मशहूरात और मुसलमात से मुरक्कब होता है। मशहूरात वो बातें जो मशहूर हों लोगों के अंदर, चाहे तमाम लोगों में मशहूर हों और चाहे बाज खास जमात में या खास इलाके वालों के अंदर मशहूर हों, इनको मशहूरात कहते हैं। ये सच्ची भी हो सकती हैं और झूठी भी हो सकती हैं। और कुछ मुसल्लमात हैं, मुसल्लमात वो बातें जिनको फरीके मुखालिफ जो है जिसके साथ बहस हो रही है, मुनाजरा हो रहा है, वो जिनको कबूल करता है, वो भी सच्ची भी हो सकती हैं और झूठी भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप उससे बहस मुबाहसा कर रहे हैं, जब बात इन बातों को वो तस्लीम करता है, तो आप इसके जरिए दलील देकर उसके उससे अपना दावा मनवा सकते हैं। तो कियास जदली जो है वो मुसल्लमात और मशहूरात से मुरक्कब होता है, और मशहूरात और मुसल्लमात दोनों सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल चाहे सच्चे हों या झूठे हों, इनके जरिए आप अपना दावा साबित कर सकते हैं, क्योंकि फरीके मुखालिफ इनको मान लेगा, क्योंकि ये बातें मशहूर होती हैं या उसके नजदीक साबित शुदा होती हैं। और उससे अगली किस्म थी कियास खताबी। कियास खताबी जो है वो मकबूलात और मजनूनात से मुरक्कब होता है। मकबूलात वो बातें जिनको, देखो लफ्ज से पता चल रहा है, मकबूलात यानी जिनको कबूल कर लिया जाता है, यानी वो बातें जो हुस्ने जन और हुस्ने रायक रखने की वजह से कबूल कर ली जाती हैं। मसलन आपको कोई नेक आदमी कोई बात बतलाए, आप उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, अब आप ज्यादा तहकीक में नहीं पढ़ते, आप उसकी बात कबूल कर लेते हैं, अगरचे जानिब मुखालिफ का भी यहां कुछ ख्याल आता है। ये जो मकबूलात और मजनूनात हैं ये जन का फायदा देते हैं, तो जानिब मुखालिफ का भी थोड़ा बहुत ख्याल आता है, लेकिन बहरहाल इसी पर इक्तिफा कर लिया जाता है कि भाई ये फला नेक आदमी ने यह बात कही है तो बात ऐसी ही होगी, तो इनको मकबूलात कहते हैं। और मजनूनात वो बातें जो जन का फायदा देती हैं, जन का फायदा देती हैं, तो वो आम है, वो आम है, जो भी बातें हों जो जन का फायदा दें सब उसमें आ गई। और मकबूलात भी जन का फायदा देती हैं, लेकिन उनको खास तौर पर अलहदा जिक्र किया, क्योंकि उसमें जो जन हासिल होता है वो हुस्ने जन की वजह से, किसकी वजह से, अच्छी राय किसी बुजुर्ग के बारे में या किसी अकलमंद के बारे में अच्छी राय रखते इंसान रखता है, इसलिए उससे हुस्ने जन के इसकी बात है, या ये अकलमंद आदमी है या फला डॉक्टर है उसकी बात है, जब इतना बड़ा माहिर आदमी डॉक्टरी का वो ये कह रहा है तो बात ऐसी ही होगी, अगर से जानिब मुखालिफ का भी कुछ ख्याल आता है कि शायद ऐसा ना हो। तो ये मकबूलात और मजनूनात दोनों जन का फायदा देते हैं, और ये इससे कियास खताबी हासिल होता है, और ये इसको कियास खताबी इसी वजह से कहते हैं कि खतीब हजरात जो है इसकी इससे मदद लेते हैं। ये जितने मुकररीन हजरात तकारीर करते हैं ये सब कियास खताबी हैं, क्योंकि आवाम जो है वो गहरी इल्मी बातें नहीं समझ सकते, वो इन्हीं बातों पर इक्तिफा कर लेते हैं और इनसे ही उनको गालिब गुमान हासिल हो जाता है, और इससे इनकी दुनियावी जिंदगी में भी इनको फायदे हासिल होते हैं और उखरवी जिंदगी के भी फायदे हासिल होते हैं, जब वो इन लोगों की बताए हुए, बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पर चलते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस कियास खताबी जो है इसका अजीम फायदा है इस दुनिया के अंदर लोगों की जिंदगी में, और इस जिंदगी के बाद जो अगली आने वाली जिंदगी है यानी मौत के बाद की जिंदगी, उसमें अजीम फायदा हासिल करते हैं। ये वाज़ो नसीहत से उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है और उनकी आखरत भी बेहतर हो जाती है जब वो इस पर अमल करते हैं। अगली किस्म है कयास शेरी भाई, और कयास शेरी वो ख्याली बातें होती हैं, ख्याली बातें, और इनके जरिए किसी चीज को बड़ा खुशनुमा दिखाया जाता है या किसी चीज को बड़ा बुरा करके दिखाया जाता है। मतलब इस ये ख्याली बातें होती हैं, इंसान ये नहीं सोचता ये सच्चियां या झूठी हैं, हां इनका इंसान पर असर पड़ता है कि इसकी वजह से कोई चीज आपको अच्छी लगने लगेगी या कोई चीज बुरी लगने लगेगी। शायर को एक चीज अच्छी लगी है, वो ऐसे अल्फाज लाएगा, ऐसे खूबसूरत अंदाज में बयान करेगा कि आपको भी वो चीज अच्छी लगने लगेगी, या कोई चीज अच्छी होगी वो ऐसे बुरे अल्फाज के साथ उसको जिक्र करेगा कि सुनने वालों पर भी असर पड़ेगा, उनको भी वो चीज बुरी मालूम होने लगेगी, या ऐसे अल्फाज लाएगा जिससे तबीयत में इनबेसात और खुशी की कैफियत पैदा होगी, या ऐसे अल्फाज ऐसी चीजें जिक्र करेगा ऐसे अल्फाज के साथ कि तबीयत पर इनकबास तारी हो जाएगा, गम की कैफियत तारी हो जाएगी भाई, तबीयत बुझ जाएगी भाई। तो ये ख्याली बातें हैं, इनके मानने न मानने की तरफ जहन नहीं जाता क्योंकि ये ख्याली बातें होती हैं। हां इनका असर पड़ता है इंसान पर बहुत ज्यादा, चुनांचे आप भी देखते हैं कि एक मामूली सा एक बाज़ औक़ात एक शेर इतना ज्यादा इंसान पर असर डालता है कि घंटों की वाज़ो नसीहत भी इंसान पर इतना असर नहीं डालती भाई। तो नफ्स इन चीजों को कबूल करता है, और फिर खुसूसन ये भी मैंने आपको बतलाया, वैसे तो अरबी जुबान में हर जुबान में अशार के मखसूस वजन होते हैं, उनमें एक तरन्नुम होता है, एक रवानगी और तसलसल होता है, और जरा भी एक हर्फ इधर उधर हो जाए पूरे शेर का वजन खराब हो जाता है। लेकिन मंतिक में शेर का वजन होना जरूरी नहीं, बस हां बात बड़ी अच्छी अनोखी अजीब होनी चाहिए, जो बात भी जिक्र की जा रही है वो अनोखी और अजीब और खुशगवार होनी चाहिए, यह जो मकसद बतलाना चाहता है उसके मुताबिक उसमें मंजरकशी की गई हो जिससे सुनने वालों पर असर पड़े, और अगर इसके साथ वजन भी हो जाए तो और ज्यादा असर पड़ेगा, और अगर इसके साथ जो है वो आवाज भी अच्छी हुई तो उसका और ही ज्यादा उसकी तासीर बढ़ जाएगी भाई। तो यह है कयास शायरी, और उससे अगला कयास है कयास सफसती भाई। कयास सफसती मैंने आपको बताया कि यह सूफ और इस्ता से मुरकब है, सूफ का माना हिकमत और इस्ता का माना मुमवह, यानी सच्ची झूठी बातों को मिलाकर जिसको कहते हैं ना दिलकश और खूबसूरत बना लिया जाता है। इसमें इस्ता का क्या माना है, यानी धोखे वाली, देखने में कुछ हो और अंदर कुछ हो। असल में मुमवह मैंने बताया ये माउन से है, माउन से, और मुमवह उस चीज को कहते हैं जिस पर सोने या चांदी का पानी चढ़ा दिया जाए। अब वो बजाहिर सोने की तरह चमकदार या चांदी की तरह चमकदार मालूम होगी लेकिन सारा धोखा ही धोखा है, क्योंकि ऊपर की ये चमक दमक है जबकि अंदर वही लोहा वगैरह या कोई और चीज होगी। तो ये सूफ और इस्ता से मुरक्कब है, सूफ का माना हिकमत और इस्ता का माना धोखे वाली है जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया हो। सूफ और इस्ता इनको मिलाया सूफा इस्ता, सूफा इस्ता का माना है धोखे वाले हिकमत, और फिर इसी से सूफस्ता बना लिया, मिलाकर एक लफ्ज बना लिया सूफस्ता, और जो ये कयास सफसती इस्तेमाल करने वाला है उसको सूफस्ताई कहते हैं, सूफस्ताईयुन। फिर इसी से बाब बना लिया, बाब दहराजा के वजन पर सफसतायु सफसितु सफसततन, तो ये बाबे दहराजा इसे बना लिया। तो ये है कयास सफसती भाई, और ये वहमियात और मुशब्बहात से मुरक्कब होता है। वहमियात वो झूठी बातें जिन्हें हमारी कुव्वत वाहिमा घर लेती है और गैर महसूस को भी महसूस का हुक्म दे देती है, झूठे कजिए होते हैं, और इसी तरह मुशब्बहात जो हैं यानी वो कजिए जो हैं तो झूठे लेकिन सच्चे कजियों के मुशाबे हैं, तो ये इनसे मुरक्कब होती है। वहमियात भी झूठे कजिए और मुशब्बहात भी झूठे कजिए जो किसके मुशाबे हों, सच्चे कजियों के मुशाबे हों। तो ये वहमियात और मुशब्बहात से मुरक्कब होता है कयास सफसती, और ये जो कयास सफसती का माहिर है अगर ये किसी हकीम यानी फलसफी के साथ मुनाजरे के अंदर बहस मुबाहसे में ये वाला कयास इस्तेमाल करे तो इस कयास को कयास सफसती कहते हैं, लेकिन अगर आम लोगों के अंदर वो इस कयास को इस्तेमाल करे तो फिर इसको मुशाग़बा कहते हैं, और ये शख्स जो है मुशाग़िबी कहलाता है, यानी बेजा फजूल बहस करने वाला, शोर शराबा करने वाला, जहां जाता है लोगों से बिला वजह वैसे ही बहस मुबहसा शुरू कर देता है, तो इसको फिर मुशागबी कहते हैं। और किसी फलसफी के मुकाबले में यह कयास इस्तेमाल करे तो इसको कयास सफसती कहते हैं, यानी धोखे वाला कयास भाई। और इसका बिज़ात कोई फायदा नहीं, यानी खुद इसका आपको कोई फायदा नहीं कि इसके जरिए आप अपने दावे को साबित करें और दूसरों पर गालिब आ जाएं, नहीं नहीं। हां बिलआरज इसका फायदा है कि जिसको कयास सफसती का पता होगा कोई और उस पर यह कयास सफसती को जारी करके धोखा नहीं दे सकेगा, कोई और उसके सामने कयास सफसती जिक्र करेगा वह फौरन उसकी गलती को पकड़ लेगा भाई कि यह तो आप धोखा दे रहे हैं भाई। और मैंने बताया था कि जो हमारी कुव्वत वाहिमा है इसका इंसान पर बड़ा अजीम गलबा है भाई, हत्ता कि यह अकल पर भी गालिब आ जाती है बसा औकात भाई। और चुनाचे मैंने उसकी मिसाल दी थी कि जमीन पर एक चौड़ी लकड़ी है, 2 फुट चौड़ी है, जमीन पर पड़ी हुई है, 50 फुट लंबी है और 2 फुट चौड़ी है। अब आपको कोई कहे यहां से वहां तक इस पर चलो, आप बड़े इत्मीनान से जाएंगे उस पर, बल्कि दौड़ना चाहे तो दौड़ते हुए भी चले जाएंगे क्योंकि 2 फुट चौड़ी है। लेकिन इसी लकड़ी को अगर 2 बिल्डिंगों के दरमियान ऊपर छत पर लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए अब गुजरो इस पर, अब देखो अब कुव्वत वाहमा आपको खौफ में मुब्तला कर देगी। अब वही लकड़ी जिस पर आप जमीन पर बड़े इत्मीनान से चल रहे थे, अब आपके लिए उस पर चंद कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अव्वल तो कोई तैयार ही नहीं होगा उस पर जाने के लिए, और अगर कोई जाएगा भी तो डोलता हुआ डरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस पर चलेगा भाई। तो ये कुव्वत वाहमा है भाई। या इसी तरह बाज लोगों पर वहम का गलबा हो जाता है, देखो वो वजू कर रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, तो बार बार धोते ही चले जाते हैं, वहम उनको कहता है कि नहीं भाई अभी सही तरह चेहरा नहीं धुला, इस तरफ कुछ खुश्क रह गया होगा, फिर वो धो लेता है, फिर कुव्वत वाहमा जहन में बार डालती है कि नहीं भाई अभी भी पूरा चेहरा नहीं धुला, 15-15, 20-20 मरतबा वो चेहरे हाथों और पांव को धोता रहता है भाई। तो ये कुव्वत वाहमा है। अलबत्ता अल्लाह ने इंसान को अकल नसीब फरमाई है, फिर इस अकल और शरीयत की मदद से इंसान फिर इस किस्म की वहमी बातों से बच जाता है और महफूज हो जाता है। तो ये है कयास सफसती भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए भाई, अब शरा में आइए आज के सबक पर। अब सिर्फ तर्जमा है भाई, तकरीबन तर्जमा देखिए भाई। قوله القياس الى اخره القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة الى الاستثنائي والاقتراني باقسامهما। कहते हैं जिस तरह कयास जो है वो तकसीम होता है अपनी हैत और सूरत, तो हैत और सूरत का एक माना है और इसको अथवे तफसीरी कहते हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि बाज़ोकात एक लफ्ज का माना आगे अतफ के जरिए बयान कर दिया जाता है कि हैत का क्या माना, आगे मातूफ अस सूरत लाकर उसका माना बयान कर दिया। तो कहते हैं कि कियास जैसे तकसीम होता है अपनी सूरत के एतबार से इलल इस्तिस्नाई वल इक्तिरानी, ये इस्तिस्नाई और इक्तिरानी की तरफ भी, अकसामी ही मा साथ इनकी अकसाम के, इस्तिस्नाई और इक्तिरानी की तरफ तकसीम होता है साथ इनकी अकसाम के। आपने पढ़ा इस्तिस्नाई की 4 किस्में हैं भाई, पहला शर्तिया होगा और दूसरा हमलिया, तो वो शर्तिया मुत्तसिला भी हो सकता है, मुनफसिला हकीकिया भी हो सकता है, मुनफसिला मानियातुल जमा भी और मुनफसिला मानियातुल खुलो भी। तो 4 किस्में कियास इस्तिस्नाई की बनती थी। और कियास इख्तिरानी फिर इन्होंने बताया था 2 किस्म पर है, एक कियास हमली है और एक कियास शर्ती है। और फिर हमली और शर्ती दोनों के अंदर भाई 4-4 शक्लें बनती हैं, शक्ल अव्वल, शक्ल सानी, सालिस और राबिया भाई। तो ये कहते हैं कियास तकसीम होता है अपनी सूरत के एतबार से कियास इस्तिस्नाई और इक्तिरानी की तरफ उनकी अकसाम के साथ, यानी ये सारी जो आगे किस्में भी बन रही हैं ये सूरत के एतबार से हैं। कज़ालिका यनक़सिमु बिएतबार अल-माद्दति इला सनाआति अल-खम्सी, इसी तरह कियास तकसीम होता है अपने मादे के एतबार से सनाआत खम्सा की तरफ, ये 5 सनातें हैं यानी 5 फन हैं भाई। हर कयास क्या है, एक अलग फन है। अब वो 5 सनातें कौन सी हैं, कहते हैं आनिल बुरहान अवल जदल अवल खताबत अवल शेर अवल मुगालता, ये 5 हैं भाई, बुरहान, जदल, खताबा, शेर और मुगालता। इन्हीं के साथ यह निस्बत मिलाकर फिर बुरहानी, जदली, खताबी, शेरी और मुगालती कहते हैं भाई। और ये मुगालता मैंने बताया मुगालता आम है, मुगालते का माना है दूसरे को गलती में मुबतला करना, दूसरे को धोखा देना, और इसी को कभी कभार क्या कहते हैं कयासे सफसती भी कहते हैं। जब सफसती कब कहेंगे, जब किसी हकीम के मुकाबले में आप इस्तेमाल करें, वैसे ये मुगालता है। कहते हैं वक़्त तुसम्मा सफसततन, और कभी कभार इस मुगालते को कयास सफसता कहते हैं, लिअन्ना मुकद्दिमातिही इम्मा अन तुफीद तस्दीकन औ तासीरन आखर गैर तस्दीक अनी तखयीला। जी अब वजह हसर जिक्र करेंगे भाई, ये पांच किस्में ही क्यों हैं, कयास की पांचों किस्में जहन में हैं। अब आप आसानी से देखो माना समझते जाएंगे। कहते हैं लि अन मुकद्दिमाती ही, मुकद्दिमाती ही मैंने मजरूर क्यों पढ़ा भाई जी, हां शाबाश, ये मनसूब है, अन्ना का इसम है, अन्ना नसब देता है, और ये जो मैंने पढ़ा ये मनसूब है, इसका नसब आता ही कसरा की सूरत में है क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। लिअन्न मुकद्दिमाती ही, इसलिए क्योंकि कियास के जो मुकद्दिमात हैं, इम्मा अन तुफीद तस्दीकन औ तासीरन आखरा गैर तस्दीकी, या तो ये तस्दीक का फायदा देंगे औ तासीरन आखरा, या किसी दूसरी तासीर का फायदा देंगे गैर तस्दीकी, तस्दीक के अलावा। ये जो कियास शेरी है ये कोई तस्दीक का फायदा नहीं देता भाई, इसकी वजह से तस्दीक किसे कहते हैं, जिसमें इंसान एक बात को मान लेता है कि ऐसा है या उसका गालिब गुमान हो जाता है। तस्दीक में क्या जरूरी, गालिब गुमान, यूं कहो तस्दीक में इज़ान जरूरी है। इज़ान का क्या माना, मान लेना, एक बात को मान लेना। याद रखो जब तक आप एक बात को मानेंगे नहीं वो तस्दीक नहीं है भाई, वरना शक, शक जिसमें दोनों जानिबें बराबर होती हैं। आपको किसने कहा जैद आलिम है, तो अब आपके जहन में कभी आता है जैद आलिम है, कभी आता है जैद आलिम नहीं, 50% ख्याल उसके आलिम होने का और 50% उसके आलिम ना होने का। तो देखो जैद आलिम है इस वक्त आपके जहन में है, लेकिन क्या आपने इसको कबूल किया, आपके जहन ने इसको नहीं कबूल नहीं किया, हालांकि जुमला खबरिया है लेकिन आपके जहन ने चूंकि कबूल नहीं किया, इसको माना नहीं, इसलिए इसको तस्दीक नहीं कहते। तस्दीक में इज़ान जहन का मान लेना जरूरी है, और उसका सबसे कम दर्जा जन है। जन में एक जहन एक चीज के बारे में गालिब गुमान कर लेता है। मसलन किसी ने आपसे कहा कि जैद आलिम है, आपका 80-90% ख्याल है कि जैद आलिम है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कभी आ जाता है कि शायद आलिम ना हो, तो चूंकि ज्यादा ख्याल है आलिम होने का, तो गोया यूं ही समझो जहन ने मान लिया है, जहन ने मान लिया है, इसलिए जन को तस्दीक कहते हैं। तो तस्दीक के अंदर जहन का इज़ान जरूरी है, मान लेना जरूरी है भाई। तो ये जो कियास शेरी होता है इसमें इज़ान नहीं होता भाई, शायर ऊंची ऊंची बातें जिक्र करता है, ख्याली बातें जिक्र करता है। जैसे मैंने कल के शेर में मिसाल जिक्र की थी कि शायर कहता है कि मेरे महबूब ने बनियान पहनी हुई है और वो बनियान फटी हुई है, और फिर उसकी मिसाल दी कि भाई मेरा महबूब तो चांद है भाई, और चांद की रोशनी से सूती कपड़ा, सूती कपड़ा जो ये कपास से रुई से बना हुआ हो, ये सूती कपड़ा चांद की रोशनी की वजह से गल जाता है और जल्दी फट जाता है, तो वो कपड़ा जो चांद के साथ लगा हुआ हो जाहिर सी बात है वो तो और ज्यादा जल्दी फटेगा, तो मेरा महबूब चूंकि चांद है इसलिए उसने जो बनियान पहनी हुई है वो फटी हुई है। तो देखो अब ये ख्याली बात उसने जिक्र की, लेकिन वही चीज जो बड़ी नापसंदीदा लग रही थी अब हसीन मालूम होने लगी, उसने ऐसे अल्फाज और ऐसे ख्यालात इसमें जिक्र किए। तो ये जो कयास शेरी होता है ये नफ्सों पर असर डालता है, इसकी तासीर होती है, कोई चीज अच्छी लगने लगेगी उसकी, और इसकी वजह से कभी कोई चीज बुरी लगने लगेगी, कभी इसकी वजह से नफ्स पर इनबिसात और खुशी और फरहत वाली कैफियत तारी हो जाएगी, और कभी नफ्स में इनकबाज वाली कैफियत आ जाएगी, नफ्स में बंदिश आ जाएगी, बोझ सा बन जाएगा और गम सी किसी कैफियत कुछ तारी हो जाएगी। तो ये जो कयास शेरी होता है ये किसी आगे नतीजे का फायदा नहीं देते कि कोई नई तस्दीक इससे हासिल होती है, हां इसकी वजह से नफ्स पर असरात पड़ते हैं, तो इसकी तासीर होती है, क्या होती है तासीर, तो यह माना है कि लिअन्न मुकद्दिमाती ही, इसलिए क्योंकि कियास के मुकद्दिमात जो हैं इम्मा अन तुफीद तस्दीकन औ तासीरन आखर गैर तस्दीकी, या तो वो तस्दीक का फायदा देंगे या किसी दूसरी तासीर का तस्दीक के अलावा, तस्दीक के अलावा किसी और तासीर का फायदा देंगे। आनी तखीला यानी के तखील, यानी के तखील का आसानी शेर, जो दूसरी किस्म है वो शेर है, जो तस्दीक के बजाय किसी और तासीर वगैरह का फायदा दे यानी तखील का, उसको क्या कहते हैं शेर, इसको आसानी शेर। वल अव्वलु, और पहली किस्म, पहली किस्म कौन सी जो तस्दीक का फायदा दे, अब उसके अंदर बताएंगे वो पांच किस्म पर है। तो कहते हैं आसानी शेर, दूसरी किस्म जो यानी तखील का फायदा दे वो कियास, वो शेर है यानी कियास शेरी है। वल अव्वलु इम्मा अन युफीदा ज़न्नन औ जज़्मन, और पहली किस्म जो तस्दीक का फायदा देती है, या तो फिर वो ज़न का फायदा देगी औ जज़्मन या यकीन का फायदा देगी। तवज्जो है, ज़न जिसमें जानिब मुखालिफ भी थोड़ी आ जाती है, जबकि इससे ऊपर दर्जा है जज़्म का। जज़्म का माना है एक बात को मान लेना जिसमें नकीस का इहतमाल ना हो। तवज्जो है, मुझे किसी ने कहा जैद आलिम है तो मेरे जहन ने 80-90% मान लिया कि जैद आलिम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी ख्याल आ जाता है कि शायद आलिम ना हो, इस आदमी ने मुझे वैसे ही कह दिया हो, तो लेकिन चूंकि गालिब गुमान है तो इसको क्या कहेंगे, जन। और इसमें देखो नकीस का भी ख्याल आता है कि हो सकता है आलिम ना हो, ज्यादा गुमान क्या आलिम होने का, और कभी इसकी नकीज भी आ जाती है, तो जो जन होता है इसमें नकीज का भी इहतमाल होता है अगरचे कलील होता है, जबकि इससे ऊपर दर्जा जज्म का है, जज्म जिसमें नकीज का इहतमाल नहीं होता, जिसमें आप पूरे तौर पर एक बात को मान लेते हैं, और इसी को तकलीद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकलीद। मैंने आपको बतलाया था कि जन से ऊपर दर्जा जो है वो तकलीद है, तकलीद के अंदर जिसमें आप बात मान लेते हैं और जानिब मुखालिफ का ख्याल यानी नकीस का ख्याल भी आपके जहन में नहीं आता। आपने पूरे तौर पर मान लिया कि जैद आलिम है, लेकिन यह इलम आपका पुख्ता नहीं है, अगर कोई मुशक्किक आ जाएगा, शक डालेगा, तो तशकीक मुशक्किक से आपका यह इलम जायल हो जाएगा। आपने तो मान लिया, किसने आपको बताया जैद आलिम है, आपने पूरे तौर पर मान लिया, आलिम ना होने का ख्याल भी जहन में नहीं आता, लेकिन फिर एक और आदमी आया, उसने दो चार ऐसी बातें जैद के बारे में की कि आपको शक पड़ना शुरू हो गया कि शायद वो आलिम नहीं है। देखो, आप एक बात को मान चुके थे, आपका जहन उसको तस्लीम कर चुका था, दूसरी जानिब का ख्याल भी नहीं आ रहा था जहन में, लेकिन एक शक डालने वाले ने शक डाला, तो आपका यह इलम जायल हो गया या नहीं? देखा, तो ये जो तकलीद होती है ये तशकीक मुशक्किक से जायल हो जाती है, और इससे ऊपर वाला दर्जा जो है उसको यकीन कहते हैं इल्म मंतिक की इस्तेलाह में। एक तो हम यकीन का लफ्ज आम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, वो नहीं, मंतिक में उसका नाम क्या है, यकीन है, और इसी का नाम इलम भी है, इसी को क्या कहते हैं, इलम भी, जिसमें जानिब मुखालिफ का इस्तेमाल भी नहीं होता यानी नकीस का इस्तेमाल भी नहीं होता, और कोई 100 दलाइल दे दे तो भी ये जायल नहीं होता, यानी तशकीक मुशक्किक से भी ये जायल नहीं होता। जैसे आप और हम सब मानते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, और क्यामत कायम होगी और जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, क्यामत का दिन कायम होगा, हिसाब किताब होगा, ये सब बातें हम मानते हैं, और कोई 1000 दलाइल भी दे दे तो ये हमारा इलम वो जायल नहीं कर सकता भाई, तो इसको कहते हैं यकीन भाई। तो तस्दीक का सबसे इब्तदाई दर्जा क्या, जन, उससे ऊपर दर्जा तकलीद, उससे ऊपर दर्जा यकीन, लेकिन यकीन में यह जरूरी है यह वाकये के मुताबिक हो भाई, और अगर यह वाकये के मुताबिक ना हो, एक आदमी को एक बात पर इतना यकीन है कि आप उसको 1000 दलीलें दे दें वो फिर भी नहीं मानता, और उसका इलम आप जायल नहीं कर सकते, और लेकिन वो वाकये के मुताबिक नहीं है, तो इसको जहले मुरक्कब कहेंगे। यह दुगनी जहालत है भाई, एक तो गलत बात पर डटा हुआ है और फिर दूसरा किसी के समझाने से समझता भी नहीं है, इस शख्स की इस्लाह नहीं हो सकती भाई। अगर जहन में यह हो कि शायद मैं गलती पर हूं, फिर तो इस्लाह का इम्कान होता है, लेकिन इंसान गलत बात पर डटा हुआ हो और जहन में यह बात हो कि मैं ही सही हूं बाकी सब गलत हैं, तो इसकी इस्लाह नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। वल अव्वलु इम्मा अन युफीदा ज़न्नन औ जज़्मन, और पहली किस्म जो है यानी जो तस्दीक का फायदा देती है या तो वो ज़न का फायदा देगी औ जज़्मन या जज़्म का, ज़न जिसमें नकीस का इहतेमाल होता है, जज़्म जिसमें नकीस का इहतेमाल नहीं होता। फल अव्वलुल खताबतु, तो पहली किस्म जो है वो खताबा है, वो कयासे खताबी है यानी जो ज़न का फायदा देता है। वसानी, और दूसरा जो है इन अफादा जज़्मन यकीनियन फहुवल बुरहानु, अगर वो जज़्म यकीनी का फायदा दे तो वो बुरहान है। तो वो जो है जज़्म यकीनी, जज़्म है यानी नकीस का इहतेमाल भी नहीं और यकीन का फायदा हासिल हो रहा है जो तशकीक मुशक्किक से जायल नहीं होता यानी साबित है, पुख्ता है आपके नजदीक, तो ये बुरहान। फहुवल बुरहानु, तो ये कयास बुरहान है। वह इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, फ इन अतुबिरा फीही उमूमुल इतराफी मिनल आमती अवि तस्लीमु मिनल खस्मी फहुवल जदलू, बस अगर मोतबर हो उसके अंदर उमूमुल इतराफी मिनल आमती, आम लोगों की तरफ से उसका इतराफ उमूमी तौर पर यानी आम तौर पर सारे लोग उसको मानते हैं, सब में वो बात मशहूर है। उमूमुल इतराफी मिनल आमती, मैंने बताया था मशहूरात वो कजिए जो आम लोगों में मशहूर हों, और कभी ये तमाम लोगों में मशहूर होते हैं और कभी खास इलाके के लोगों में या खास जमात वालों में। तो ये उमूमुल इतराफी मिनल आमती यानी इससे मुराद वो मशहूरात हैं जो तमाम लोगों में मशहूर हैं, ये माना है। फैनी अतुबिरफी ही उमूमुल इतराफी मिनल आमती, आमा यानी आवाम, आम लोग, एतराफ जिसको मानते हैं, उमूमुल एतराफ यानी आम लोग सब इसको क्या करते हैं मानते हैं, इन्हीं मशहूरात मुराद हैं। कहते हैं फैनी अतुबिरा फीह उमूमुल एतराफ मिनल आमती, अगर इसके अंदर मोतबर हो जो मोतबर जो है वह उमूम एतराफ है मिनल आमती आम लोगों की जानिब से, अवि तस्लीम मिनल खस्मी, अगर इसमें उमूम एतराफ हो मिनल आमती आम लोगों में, अभी तस्लीम मिनल खस्मी, या इसमें तस्लीम करना हो फरीक मुखालिफ की तरफ से, खसम किसको कहते हैं, फरीक मुखालिफ जिससे आप बहस मुबाहसा मुनाजरा कर रहे हैं, तो फहुवल जदलु, तो ये जदल है। भाई कयास जदल ही कौन से मुकदमात से मुरक्कब होता था, मशहूरात और मुसलमात, वही बयान कर रहे हैं। कहते हैं अगर उसके अंदर उमूम एतराफ हो आम लोगों की जानिब से यानी आम लोग उसको मानते हैं मशहूर बातों में से है, अभी तस्लीम मिनल खस्मी, या तस्लीम करना है खसम की तरफ से यानी फरीक मुखालिफ की तरफ से यानी उसके नजदीक ये मुसलमा बातों में से है, फहुवल जदलु, तो ये कयास कौन सा है, कयास जदल है भाई। वह इल्ला, और अगर ऐसा ना हो यानी आम लोग उसको नहीं मानते और न फरीक मुखालिफ इसको तस्लीम करता है, फहुअल मुगालता तू, तो इसको मुगालता कहते हैं। वजह हसर समझ में आ गई, फिर सुनो वजह हसर, इधर देखिए, इधर देखिए, इन्होंने बताया कि कयास जो है या तो वो तस्दीक का फायदा देगा या किसी दूसरी तासीर का यानी तखील वगैरह का, जहन में ख्याली बातें आती हैं, तो अगर वो अगर वो ख्याली बातों का फायदा दे उसका क्या नाम, कयास शेरी, अगर तस्दीक का फायदा देता है तो फिर वो तस्दीक जो है या तो वो जन का फायदा देगी या जज़्म का, अगर जन का फायदा दे तो ये कयास खताबी, और अगर जज़्म का फायदा दे तो फिर अगर वो जज़्म यकीनी हो तो फिर वो कयास बुरहानी है, और अगर यकीनी नहीं है तो फिर आम लोग उसको मानते हैं और फरीक मुखालिफ भी उसको तस्लीम करेगा या ऐसा नहीं होगा। अगर आम लोगों में भी मशहूर है और फरीक मुखालिफ भी उसको तस्लीम करता है तो ये मशहूरात और मुसलमात से जो है ये क्या है, कयास जदली है। और अगर ऐसा ना हो यानी आम लोग इसको में मशहूर नहीं और फरीक मुखालिफ इसको तस्लीम नहीं करता तो फिर वो कयास मुगालता है। देखा ये पांच किस्में हो गई, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वालम तू जान ले अन्नल मुगालतत इन इस्तुमिलत फी मुकाबलतिल हकीम सुमियत सफसततन, तू जान ले कि मुगालता अगर इसको इस्तेमाल किया जाए किसी हकीम यानी फलसफी के मुकाबले में, हकीम का क्या माना, फलसफी, कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए किसी फलसफी के मुकाबले में, सुमियत सफसततन, तो इसको सफसता कहते हैं। व इन इस्तुमिलत फी मुकाबलति गैरिल हकीम सुमियत मुशागबतन, और अगर इसको इस्तेमाल किया जाए फलसफी के अलावा किसी और के मुकाबले में तो इसको मुशागबा कहते हैं। मुशागबा यानी वैसे बेजा बहस मुबाहसा करना और शोर करना। वालम ऐजन, और तू ये भी जान ले कि अन्नहु उतुबिरा फिल बुरहानि अन यकूनु मुकद्दिमातुहु बी असरिहा यकीनियतन, कि बुरहान के अंदर जरूरी है। इधर देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि कियास बुरहानी में उसके दोनों मुकद्दिमात का यकीनी होना जरूरी, जबकि बाकी कियास की जो चार किस्में हैं उनमें दोनों मुकद्दिमात उसी नौ के होना जरूरी नहीं। कियास जदली किससे मुरक्कब होता है? मशहूरात और मुसलमात से। लेकिन इसके दोनों मुकद्दिमात का मशहूरा या मुसलमा होना या एक मशहूरा और एक मुसलमा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक यकीनी हो और दूसरा मशहूरा या मुसलमा हो तो भी इसको कियास जदली कहेंगे। और यहां मैंने आपको जाब्ता बतलाया था कि वो कियास जिसके दो मुकद्दिमात हों तो उसका नाम उसमें से जो कम दर्जे वाला मुकद्दमा है उसके एतबार से उसका नाम होगा। अब एक कियास जो है मुरक्कब है दो मुकद्दमों से, एक मुकद्दमा यकीनी और एक जो है मशहूरा, तो इनमें यकीनी और मशहूरा में से कम दर्जे वाला कौन सा? मशहूरा, क्योंकि यकीनी तो यकीनी है जबकि मशहूरा सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है, तो कजिया मशहूरा जो है वो कम दर्जे वाला हुआ और इसके एतबार से अब इसका नाम होगा और इसको फिर क्या कहेंगे? कियास जदली। इसी तरह अगर एक कियास है उसके अंदर एक मुकद्दमा मशहूरा है और एक मुकद्दमा मकबूला है, तो मशहूरा और मकबूला में से कम दर्जे वाला कौन सा? मकबूला, क्योंकि वो जन का फायदा देता है। ये जो मशहूरा और मुसलमा है ना, ये तो इसमें जज़्म होता है। क्या होता है? जज़्म, मान लेता है इंसान। लेकिन ये जो मकबूलात और मजूनात हैं ये तो पूरे तौर पर जहन तस्लीम नहीं करता, जानिब मुखालिफ का भी थोड़ा ख्याल रहता है। तो अब एक कियास है वो मुरक्कब है, एक मुकद्दमा क्या है? मशहूरा या मुसलमा, और दूसरा क्या है? मकबूला है या मजनूना है, तो कम दर्जे का कौन सा? मकबूला या मजनूना। लिहाजा इसको कियास जदली नहीं कहेंगे बल्कि कियास खताबी कहेंगे। और इसी तरह अगर एक कियास है उसका एक मुकद्दमा यकीनी है और एक मुकद्दमा मुखयला है, ख्याली है, तो अदना कौन सा? मुखयला। तो इस कियास को क्या कहेंगे? कियास शायरी कहेंगे। तो मालूम हुआ बुरहान के अंदर दोनों मुकद्दमों का यकीनी होना जरूरी, बाकी जितनी कियास की किस्में हैं उनमें दोनों मुकद्दमों का एक किस्म का होना जरूरी नहीं। एक एक किस्म का हो, दूसरा दूसरी किस्म का हो, लेकिन एतबार वो अदना दर्जे वाले मुकद्दमे का होगा। कहते हैं वालम ऐजन, और ये भी आप जान लीजिए, अन्नहु उतुबिरा फिल बुरहानि अन यकून मुकद्दिमातुहु बी असरिहा यकीनियतन, कि बुरहान के अंदर मुतबर यह है कि अन यकून मुकद्दिमातुहु, कि उसके मुकद्दिमात जो हैं, बी असरिहा ऐ बी जमीईहा, यानी वो सारे के सारे यकीनियतन क्या हो? यकीन। बुरहान में जरूरी है कि उसके सारे मुकद्दमात यकीनी हों, बिखिलाफ गैरिही मिनल अक्सामी, बिखिलाफ इसके अलावा जो अक्साम है, मसलन मिसाल के तौर पर, यकफी फी कौनिल कियास मुगालततन, काफी है कियास के मुगालता होने में, अन यकून इहदा मुकद्दमतैहि वहमियतन व इन कानल उखरा यकीनियतन, कि इसके दो मुकद्दमों में से एक वहमिया होना चाहिए अगरचे दूसरा यकीनी हो। एक यकीनी है और एक वहमी है, अदना दर्जे वाला कौन सा? वहमी, तो इसलिए इसको कियास मुगालता कहेंगे। नाम यजिब अल्लाह यकून फी हा मा हुआ अदबन मिनहा, हां यह जरूरी है कि अल्लाह यकून फीहा, कि नहीं होना चाहिए इसमें, मा हुआ अदबन मिनहा, ऐसा कजिया जो इससे कम दर्जे वाला हो, इससे कम दर्जे वाला नहीं होना चाहिए, कश्यारियाती, जैसे कि शेरियात, व इल्ला युल्हक बिल अदवनी, वरना इसको अदवन जो कम दर्जे वाला है उसके साथ इसको मिलाया जाएगा। दो मुकदमे हैं जो दो उनमें से कम दर्जे वाला है उस कियास के साथ उसको मिला दिया जाएगा कि ये फला कियास है भाई। फल मुअल्लफ मिन मुकद्दमतिन मशहूरतिन व उखरा मुखय्यलतिन ला युसम्मा जदलियन बल शेरियन, पस वो कयास जो मुरक्कब हो एक मशहूरा मुकदमे से और एक मुखयला से, ला युसम्मा जदलियन, इसको जदली नहीं कहेंगे बल शेरियन, बल्कि कयास शेरी कहेंगे। फारिफ, पस इस बात को आप जान लो। आगे देखिए भाई, कौलहू मिनल यकीनी याती, अल यकीन हुआ तस्दीकुल जाजिमुल मुताबिकुल लिल वाकिअ साबितु। यकीन जो है वो तस्दीक है। इधर देखिए, यकीन कौन सी तस्दीक का नाम था? एक है जन, एक तकलीद और एक यकीन और एक जहले मुरक्कब। यकीन कौन सी तस्दीक है? जिसमें जजम होगा, यानी नकीस का एहतमाल नहीं, यानी जानिब मुखालिफ का एहतमाल नहीं, और नीज वो साबित होगी यानी पुख्ता होगी, कोई हजार दलीलें दे दे उसको तोड़ नहीं सकता, यानी तशकीक मुशकीक से वो जायल नहीं, तो वो साबित होगी यानी पुख्ता होगी और नीज मुताबिक लिल वाकया होगी, वाकये के भी मुताबिक होगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अल यकीन हुआ तस्दीकुल जाजिमुल मुताबिकुल लिल वाकया साबितु। यकीन जो है वो तस्दीक है जो जाजिम हो, यानी जिसमें नकीस का एहतमाल ना हो, अल मुताबिकुल लिल वाकये के मुताबिक हो, असाबितु और साबित हो यानी पुख्ता हो, मजबूत हो, यानी तशकीक मुशक्किक से जायल ना हो। भाई फबियातिबारी तस्दीकी, तो तस्दीक के एतबार से लम यशमली शक का वल वहम व तखीला व साइर तस्वुराती। भाई ऊपर मतन में देखिए इन्होंने क्या कहा, अल कियास इम्मा बुरहानी यूं यता अल्लफ मिनल यकीनियाती। कियास बुरहानी वो है जो मुरक्कब हो किस से, यकीनियात से। और यकीन किसे कहते हैं? नीचे शरा में बता दिए, यकीन उस तस्दीक का नाम है जो जाजिम हो, मुताबिक लिल वाकिअ हो और साबित हो, यानी तशकीक मुशक्किक से जायल ना हो। तो इसमें पहली कैद क्या आई? तस्दीक। जब तस्दीक कैद आ गई तो तसव्वुर की सारी किस्में निकल गई। शक वो भी किसकी किस्म था? तसव्वुर की। वहम वो भी तसव्वुर की, और तखयील ये भी तसव्वुर, वो सब भी निकल गए और बाकी किस्में भी निकल गईं। अल जाजिम कहा तो कौन निकल गया? जन निकल गया, क्योंकि जन में नकीस का इस्तेमाल होता है। और मुताबिक लिल वाकिअ कहा कौन निकल गया? जहले मुरक्कब निकल गया, कि वो वाकिअ के मुताबिक नहीं होता। और असाबित कहा तो इसके जरिए तकलीद निकल गई। बात समझ में आ गई? तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं फबियातिबारी तस्दीकी लम यशमली शक वल वहम व तखीला, तो तस्दीक के एतबार से ये शामिल नहीं है शक को, वहम और तखील को। यानी ये जो कियास है, जब ये यकीनियात से मुरक्कब है तो इसमें सारे जो मुकदमे हैं वो तस्दीक होने चाहिए, कोई तसव्वुर की कबील से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यकीन जो है वो तस्दीक की किस्म है। फबियातिबारी तस्दीकी लम यशमल शक वल वहम व तखील, तो तस्दीक के एतबार से ये शामिल ना हुआ ये जो कियास बुरहानी है, शक को, वहम को और तखील को। वसाइर तसव्वुराती, और इसी तरह बाकी तसव्वुरात को, यानी उनको भी शामिल नहीं, वो सब निकल गए। वकैदुल जज्मी अखरजा जन्ना, और जज्म की जो कैद है इसने जन को निकाल दिया। वल मुताबकतुल जहल मुरक्कबा, और मुताबकत ने निकाल दिया जहले मुरक्कब को। अल मुताबकतु इसका आतफ है अखरजा के अंदर हुआ जमीर है, इबारत पे नजर है जी। फिर देखें वकैदुल जज्मी, और जज्म की जो कैद आई अखरजा, इसने निकाल दिया अज़न्ना, किसको? जन। तो जन यह है मफूल बन रहा है अखरजा फेल के लिए, और अखराजा के अंदर हुआ जमीर है जो राज है मुबतदा, यानी कैदुल जज्मी, जज्म की जो कैद है इसने निकाल दिया किसको? जन को। अच्छा, तो अखराजा के अंदर हुआ जमीर है। अब आगे आया वल मुताबकतुल जहलल मुरक्कबा, अल मुताबकतु को पढ़े मरफू और अल जहलल मुरक्कबा इसको पढ़े मनसूब। अल मुताबकतु इसका आतफ है अखराजा के अंदर हुआ जमीर जो फाइल है और वो मरफू, तो उस पर जो मातूफ है अल मुताबका वो भी मरफू। और अल जहल अल मुरक्कबा इसका आतफ है अज़न्न पर, और जन मफूल है तो अल जहल अल मुरक्कब भी मफूल। इसी तरह आगे आ रहा है वस साबितु, इसका आतफ भी उसी पर है, ये फाइल के दर्जे में। और अत तकलीदा ये मफूल है भाई, इबारत समझ में आ गई। तो कहते हैं जज़्म की कैद ने जन को निकाल दिया, वल मुताबकतुल जहल अल मुरक्कबा, और मुताबकत ने जहल मुरक्कब को निकाल दिया, व साबितु तकलीदा, और साबित ने तकलीद को निकाल दिया। साबित हो यानी जो तशकीक मुशक्किक से जायल न हो, पुख्ता हो भाई, मजबूत हो वो इलम। सुम्मल मुकद्दिमातुल यकीनियत इम्मा बदीहियातुन औ नजरियातुन मुंतहियतुन इलल बदीहियाति लिस्तिहालति दौरी व तसलसुली। आपकी किताबों में औ तो नहीं है, लिस्तिहालति दौरी अवि तसलसुली, औ नहीं होना चाहिए भाई, वाव होना चाहिए, यह किताबत की गलती है, इसकी इसलाह कर ले। कहते हैं फिर मुकदमात यकीनिया इम्मा बदीही यातुन औ नजरी यातुन, या तो वो बदीही होंगे या नजरी होंगे। इधर देखिए भाई, याद रखिए कि कियास बुरहानी यकीनियात से मुरकब होता है, किससे? और यकीनियात के आगे फिर इन्होंने बदीहियात की छह किस्में गिनवा दी कि उसूल यकीनियात ये हैं, उसूल यकीनियात ये छह हैं। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो कियास बुरहानी होता है यह सिर्फ बदीहियात से मुरक्कब होगा, इसमें नजरी नहीं आ सकता, एक मुकदमा भी नजरी नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? बदीही होने चाहिए, नजरी नहीं। नजरी किसे कहते हैं? वो मजहूल तस्दीक जो किसके जरिए हासिल हुई, मालूम तस्दीक, मालूम तस्दीकात को मिलाया, किसको हासिल किया? मजहूल तस्दीक को। यह मालूम चीजों को मिलाकर मजहूल को हासिल करना यह क्या कहलाता है? नजर व फिक्र। तो यह जो नजरी है वह है जो कियास के जरिए हासिल हुआ। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो कियास बुरहानी है इसके तमाम मुकदमात का बदीही होना जरूरी है, जबकि हक यह है कि नहीं, तमाम मुकदमात का बदीही होना जरूरी नहीं, बल्कि नजरी भी हो सकते हैं। इस बुरहान के मुकदमात बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी, लेकिन वो नजरी ऐसे होंगे कि वो बदीही से हासिल हुए होंगे। वो नजरी कैसे होंगे? वो बदीही से हासिल हुए होंगे। तवज्जो है, जब बदीही यकीनी थे तो आगे जो नजरी हासिल हुआ वो भी क्या होगा? यकीनी होगा। तो हक यह है कि कियास बुरहानी के मुकदमात बदीही भी हो सकते हैं और ऐसे नजरी भी जो किससे हासिल हुए हैं, जो बदीही से हासिल हुए हों। इसी को वो यूं ताबीर करेंगे कि कियास बुरहानी है उसके मुकदमात बदीही भी हो सकते हैं और ऐसे नजरी भी जिनकी इंतहा बदीही पर हो रही है, ऐसे नजरी जिनकी इंतहा बदीही पर हो रही है। क्या माना इंतहा उन पर हो रही है? यानी उनसे ये हासिल हुए हैं। पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो जाकर इनकी इंतहा किस पर होगी? पीछे बदीही पर, यानी ये बदीही से हासिल हुए हैं यह वाले नजरी। अच्छी तरह सबको बात समझ में आ गई, यह माना है। कहते हैं सुम्मल मुकदमातुल यकीनियत इम्मा बदीहियातुन औ नजरियातुन मुंतहियतुन इलल बदीहियाति। कहते हैं फिर ये मुकदमात यकीनिया या तो वो बदीही होंगे या ऐसे नजरी होंगे, मुंतहियतुन इलल बदीहियाति, जिनकी इंतहा हो रही होगी बदीहियात पर, यानी ये उनसे हासिल हुए होंगे ये वाले नजरी। लिस्तिहालति दौरी व तसलसुली, इस वजह से कि दौर और तसलसुल बातिल हैं, इसलिए क्योंकि दौर और तसलसुल बातिल हैं। दौर, दौर की तारीफ मैंने पहले भी लिखवाई थी, फिर लिख लीजिए भाई। अद्दौर हुआ तवक्कुफु शैई अला मा यतवक्कफु अलैही, जल्दी जल्दी लिखिए भाई। अद्दौर हुआ तवक्कुफु शैई, अद्दौर हुआ तवक्कुफु शैई अला मा यतवक्कफु अलैही, लिख लिया। अद्दौर हुआ तवक्कुफु शैई अला मा यतवक्कफु अलैही, दौर कहते हैं एक चीज का मौकूफ होना उस चीज पर जो इस पर मौकूफ है, एक चीज का उस चीज पर मौकूफ होना जो इस पर मौकूफ है। मसलन देखिए, आपसे किसने पूछा जैद का घर कहां है? आपने कहा बकर के घर के सामने। फिर किसने पूछा अच्छा बकर का घर कहां है, आपने कहा जैद के घर के सामने। देखो अब एक का भी पता नहीं चल सकता भाई, जैद के घर का पता तब चलेगा जब हमें बकर के घर का पता हो, और बकर के घर का पता हमें तब चलेगा जब हमें जैद के घर का पता हो। तो इसको दौर कहते हैं, जैद के घर का पता चलना मौकूफ हो गया किस पर, जैद के घर का पता चलना किस पर मौकूफ, बकर के घर पर, और बकर के घर का जानना और पता चलाना उस वो किस पर मौकूफ, जैद पर। तो देखो एक चीज मौकूफ हो गई उस चीज पर जो खुद इस पर मौकूफ है भाई, और इसमें बीच में कभी वासिता होता है और कभी वासिता नहीं होता, कभी वासिता भी आ जाएगा बीच में, लेकिन घूम फिर कर वही पहली चीज पर एक चीज मौकूफ हो जाएगी। मसलन देखो यहां तो जैद का घर मौकूफ है किस पर, बकर के घर पर, और बकर के घर का जानना किस पर मौकूफ, जैद पर, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, कभी वास्ता भी आ जाएगा। आपसे कोई पूछता है जैद का घर कहां, आपने कहा बकर के घर के सामने, बकर का घर कहां, अमर के घर के सामने, अमर का घर कहां, खालिद के घर के सामने, खालिद का घर कहां, जैद के घर के सामने। देखा अब कई वास्तों से एक चीज फिर उसी चीज पर मौकूफ हो गई जो इस पर मौकूफ थी भाई। तो दरमियान में कभी वासिता आएगा या कभी वासिता नहीं आएगा, बहरहाल इस सब को दौर कहते हैं, एक चीज का मौकूफ होना उस चीज पर जो खुद इस पर मौकूफ है, और इसमें एक भी चीज का पता नहीं चल सकता भाई। तो दौर बातिल है भाई, दौर बातिल है। और दूसरा है तसलसुल भाई, तसलसुल की तारीफ लिख लीजिए भाई, अतसलसुलो हुआ तरत्तुबु उमूरिन गैर मुतनाहियतिन, अतसलसुलो हुआ तरत्तुबु उमूरिन गैर मुतनाहियतिन, हुआ तरत्तुबु उमूरिन गैर मुतनाहियतिन, वो मुरत्तब होना है उमूर गैर मुतनाहिया का, ला मुतनाही उमूर भाई, जिनकी कोई हद ही नहीं, जो कहीं खत्म ही नहीं हो रहे। जैसे भाई ये मनातिका वाजिबुल वजूद के कायल हैं भाई, मनातिका वाजिबुल वजूद के कायल हैं, कोई एक जात है जो खुद ब खुद है, उसे किसी ने नहीं पैदा किया और उसने इन सारी चीजों को पैदा किया है, वो वाजिबुल वजूद के कायल हुए। क्यों, क्योंकि अगर उस वाजिबुल वजूद को नहीं मानते तो तसलसुल मानना पड़ेगा, और तसलसुल तो बातिल है, दौर भी बातिल और तसलसुल भी बातिल। क्योंकि याद रखो ये दुनिया में जो जितनी चीजें हैं अल्लाह की जात के अलावा, ये सब क्या हैं, ये मुमकिनात हैं, इनका होना ना होना बराबर है, इन सबको क्या कहते हैं, मुमकिनात, इनका होना ना होना बराबर, ये हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर मुमकिन के लिए कोई बनाने वाला चाहिए। तो अगर इस मुमकिन के लिए बनाने वाला किसी दूसरे मुमकिन को करार दे दें तो उस मुमकिन के लिए भी कोई बनाने वाला चाहिए, तो उसके लिए फिर किसी तीसरे को मुमकिन को उसका खालिक करार देना पड़ेगा। अगर वो भी मुमकिन है तो उससे, अगर उसको बनाने वाला भी मुमकिन है, फिर उसके लिए भी कोई खालिक चाहिए, वो भी मुमकिन होगा। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। हर मुमकिन के लिए अगर बनाने वाला कौन हो, मुमकिन, फिर उस मुमकिन के लिए भी कोई बनाने वाला चाहिए, वो भी अगर मुमकिन है तो उसके लिए भी कोई बनाने वाला चाहिए, वो भी अगर मुमकिन है तो उसके लिए भी कोई बनाने वाला चाहिए, वो भी अगर वो भी मुमकिन है तो उसके लिए भी बनाने वाला चाहिए। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कहीं रुकेगा ही नहीं, और ये बातिल है। देखो ला मुतनाही उमूर का मुरतब होना, जिनकी कोई हद ही नहीं है, कहीं रुक ही नहीं रहे, वो सिलसिला चलता ही जा रहा है, तो ये ला मुतनाही उमूर का मुरतब होना यह तसलसुल कहलाता है, और तसलसुल बातिल है। बात समझ में आ गई, तसलसुल क्या है, बातिल है। चुनांचे मनातिका मजबूर हो गए फलासफा, और एक जात ऐसी है जो खुद बखुद है, उसको बनाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, ताकि यह सिलसिला कहीं तो जाकर रुके भाई। तो यह तसलसुल और दौर बातिल है। तो देखो इधर देखिए, बात यह चल रही थी कि जो कियास बुरहानी है इसके दोनों मुकद्दमात जो हैं, या वो बदीही होंगे या नजरी होंगे, और लेकिन ये नजरी जो है इनकी इंतहा किस पर हो रही होगी, बदीही पर हो रही होगी। इसलिए क्योंकि अगर इनकी इंतहा बदीही पर नहीं है तो ये नजरी किससे आए, पीछे नजरी ही थे, वो नजरी किससे आए, उससे पीछे और नजरी थे, उससे वो नजरी किधर से आए, वो और नजरी मुकदमा, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा, तो ये तो तसलसुल है, तसलसुल बातिल है। या ये नजरी कहां से आए, इस दूसरे नजरी से, और दूसरे नजरी कहां से आए, वो इस नजरी से आए, ये पहले वाले से, तो ये नजरी मौकूफ हो गए किस पर, उस दूसरे नजरी पर, और दूसरे नजरी मौकूफ क्या हो गए, इस पर मौकूफ हो गए, तो ये तो दौर लाजिम आया। अगर आप ये सिलसिला पीछे की तरफ अलग अलग नजरी की तरफ चलाते हो तो तसलसुल लाजिम आएगा, और अगर आप घुमाकर फिर इसी पहले नजरी की तरफ आ जाते हो तो क्या लाजिम आएगा, दौर लाजिम आएगा, और दौर भी बातिल और तसलसुल भी बातिल। लिहाजा ये जो नजरी आए हैं ये बिल आखिर इनकी इंतहा किस पर होगी, बदीही पर होगी। ये नजरी है मसलन, ये पीछे भी एक नजरी से हासिल हुए थे, लेकिन वो नजरी किससे आए थे, बदीही से। देखो सिलसिला खत्म हो गया, बदीही में तो किसी दलील की जरूरत नहीं। हां उन बदीही के जरिए पहले नजरी मुकदमात हासिल हुए और फिर उन नजरी मुकदमात से ये वाले नजरी हासिल हुए, तो देखो इन नजरी की इंतहा किस पर हो गई, बदीही पर हो गई। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम्मल मुकदमातुल यकीनियतु इम्मा बदीहियातुन औ नजरियातुन मुंतहियतुन इलल बदीहियातिल इस्तिहालतिद दौरि वत्तसलसुलि। फिर ये मुकदमात यकीनिया या तो बदीही होंगे या ऐसे नजरी होंगे जिनकी इंतहा बदीहियात पर हो रही होगी, इसलिए क्योंकि दौर और तसलसुल तो महाल हैं। कौलुहु व उसूलुहा فأصول اليقينيات هي البديهيات والنظريات متفرعة عليها। اصول यकीनियात भाई, बुनियादी यकीनियात इन्होंने कितने बताए थे, छह। अब वही बयान करने लगे, कहते हैं فأصول اليقينيات هي البديهيات والنظريات متفرعة عليها, के उसूल यकीनियात वो ये बदीहियात हैं, व नजरियात और वो नजरियात हैं, मुतफर्रियातुन अलैहा जो उनसे निकलते हैं। बदीहियात को मिलाया आपको एक नजरी हासिल हो गया। मसलन मैंने आपसे कहा जैद दर्जा सालिसा में पढ़ता है और दर्जा सालिसा का हर तालिब इलम बड़ा मंतिकी है, नतीजा क्या निकला, जैद बड़ा मंतिकी है। देखो ये जो जैद बड़ा मंतिकी है ये आपको नजर व फिक्र से हासिल हुआ ये मुकदमा। तो इसी तरह नजरियात जो हैं वो बदीहियात से हासिल होते हैं, उन पर मुतफर्रे होते हैं। असल कहते हैं जड़ को और फरा कहते हैं शाख को। जड़ें होंगी तो आगे शाखें और तना निकलेगा, जड़ें ही नहीं तो शाखें भी नहीं। तो लिहाजा उसूल यकीनियात वो बदीहियात भी हैं और इन्हीं बदीहियात से जो आगे नजरियात हासिल होते हैं वो भी क्या हैं, उसूल यकीनियात में दाखिल हैं। कहते हैं वफा उसूलुल यकीनियात ही अल बदीहियात व नजरियात मुतफर्रियातुन अलैहा। तो उसूल यकीनियात वो ये बदीहियात हैं और वो नजरियात हैं, मुतफर्रियातुन अलैहा जो उन बदीहियात पर मुतफर्रे होते हैं यानी उनसे हासिल होते हैं, उनसे निकलते हैं। वल बदीहियात सित्तत अक्साम बिहुक्म इस्तिक़राई, और बदीहियात जो हैं वो छह किस्म के हैं इस्तिक़रा के हुक्म से, यानी हमने तलाश की, जस्तुजू की, तहकीक की, हमें ये छह किस्में मिली बदीहियात की। अगर आपको कोई और मिलती है आप उसका इजाफा कर सकते हैं। वजह जब्ती, अब जब्त की वजह जिक्र कर रहे हैं भाई कि छह में बंद क्यों है, वजह हसर जिक्र करने लगे हैं कि बदीहियात छह क्यों है। कहते हैं वो वजह जब्ती और जब्त की वजह यानी तो इन छह में बंद करने की वजह यह है कि अन्नल कजाय अल बदीहियता, कि वो कजाया जो बदीही हैं, इम्मा अय्यकूना तसव्वुरु तरफैहा मा निस्बती, मेरी किताब में है मात तंबीह, ये तंबीह किताबत की गलती है, मान निस्बती लफ्ज होना चाहिए भाई, इसकी इसलाह कर लें, मान निस्बती, अन निस्बत है अलिफ्लाम के साथ। कहते हैं वजह जब्त यह है कि अनल कजाय अल बदीहियत इम्मा अन यकूना तसव्वुरु तरफैहा मा अन निस्बती काफियन फिल हुक्म वल जज्म औ ला यकूना। भाई इधर देखिए, अव्वलियात में निस्बत का यकीन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थीं? अव्वलियात में किसी कजिए पर यकीन करने के लिए सिर्फ तसव्वुर तरफैन और निस्बत का तसव्वुर काफी था। जैसे अलकुल्लु आजमु मिनल जुज, कुल क्या होता है? जुज से बड़ा। तो कुल का तसव्वुर किया, जुज का तसव्वुर किया और बड़े होने की निस्बत का तसव्वुर किया कि कुल की तरफ कौन सी निस्बत की जा रही है, बड़े होने की निस्बत। तो फौरन ही जहन ने मान लिया कि बात ऐसी ही है, किसी दलील की जरूरत मजीद नहीं। तो कहते हैं कि अनल कजाय अल बदीहियत, के कजाय बदीहिया जो है इम्मा अयकून तसव्वुर तरफैहा मा तंबीही काफियन फिल हुक्म वल जज्मी, कि या तो उसकी दो जो तरफेन है यानी मौजू और महमूल, उनका तसव्वुर मा निस्बती साथ किसके, निस्बत के तसव्वुर के, काफियन ये काफी होगा फिल हुक्म वल जज्मी उस हुक्म और उस जज्म के अंदर, औ ला यकूना या ऐसा नहीं होगा। फल अव्वल हुवल अव्वलियात, तो पहली किस्म यानी जिसमें सिर्फ तसव्वुर तरफेन और निस्बत काफी है उस हुक्म के लिए और उस जज्म के लिए, तो वो अव्वलियात है। वो क्या है भाई? वो काफी है हुक्म में और जज्म में। जज्म का क्या माना मैंने बतलाया? जज्म यकीन, यानी जिसमें नकीस का इहतमाल ना हो, जानिब मुखालिफ का इहतमाल ना हो। इसी तरह हुक्म भी यह है। देखो, एक होता है मौजू, एक महमूल। महमूल का मौजू पर हुक्म लगाया जाता है। मैंने आपको बताया जैद आलिम है, आपने उसको मान लिया पूरे तौर पर। तवज्जो है भाई, यहां आया फिल हुक्म वल जज्म, फिल हुक्म वल जज्म। देखो ये अत्फ तफसीरी है, हुक्म और जज्म का एक माना। हुक्म का माना आगे जज्म के साथ कर दिया। हुक्म किसको कहते हैं? जज्म को कहते हैं, यानी वो एतिकाद जिसमें नकीस का इहतमाल न हो। तो ये काफी है हुक्म और जज्म में, औला यकूना या ऐसा नहीं। तो कहते हैं फल अव्वल हुवल अव्वलियात, तो पहली किस्म जो है वो अव्वलियात है। वसानी, और दूसरी किस्म इधर देखिए, या तो तरफेन का तसव्वुर और निस्बत का तसव्वुर, ये तीन चीजों का तसव्वुर करना जहन के लिए काफी है इनको मानने के लिए। ये तीन चीजों का तसव्वुर करते ही जहन मान लेता है कि अलकुल्लु आजमु मिनल जुज। अगर ऐसा हो तो उसको क्या कहेंगे? अव्वलियात। अगर ऐसा ना हो फिर क्या कहेंगे? अब आगे मजीद सूरतें जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं वसानी, और दूसरी सूरत इम्मा अन यतवक्कफ़ अला वासिततिन गैरिल हिस्सि ज़ाहिरी अविल बातिनी, या तो वो मौकूफ होगा ऐसे वासिते पर जो हिस्से जाहिर और हिस्से बातिन के अलावा होगा, औला या ऐसा नहीं हो। तवज्जो है इधर देखिए, अगर तसव्वुर तरफेन और निस्बत काफी नहीं है उसका यकीन करने के लिए, अगर काफी नहीं तो फिर उसमें वासिता चाहिए होगा। वो वासिता या तो हिस्से जाहिरी और बातिनी के अलावा होगा या इसके अलावा नहीं होगा, यही वास्ता होगा। यानी हिस्से जाहिरी और बातिनी, अगर हिस्से जाहिरी और बातिनी ही वास्ता है तो उसको क्या कहेंगे? मुशाहदात। और अगर इसके अलावा वास्ता है फिर आगे तफसील बयान करेंगे। तो कहते हैं वसानी इम्मा अन यतवक्कफ अला वासिततिन गैरिल हिस्सि ज़ाहिरी अविल बातिनी औला, कि या तो वो मौकूफ होगा ऐसे वासिते पर जो हिस्से जाहिर और बातिन के अलावा है, औला या ऐसा नहीं होगा। इनके अलावा वास्ता नहीं होगा बल्कि यही वास्ता होगा। तो असानिल मुशाहदात, तो दूसरे क्या हैं? मुशाहदात, जब यही वासिता हो। वतन कसिमु, और फिर ये मुशाहदात जो हैं तकसीम होते हैं, इला मुशाहदात इन बिल हिस्से जाहिरी, उन मुशाहदात की तरफ जो हिस्से जाहिर के जरिए होते हैं। व तुसम्मा हिस्सियात इन, और इनको हिस्सियात और महसूसात कहते हैं। व इला मुशाहदात इन बिल हिस्सिल बातिनी, व तुसम्मा विजदानियात इन, और या ये तकसीम होता है उन मुशाहदात की तरफ जो हिस्से बातिनी से होते हैं, यानी हवासे खमसा बातिना से। व तुसम्मा विजदानियात इन, और इसको विजदानियात कहते हैं। वल अव्वलु, और पहली किस्म, पहली किस्म कौन सी? जिसमें वासिता حس کے علاوہ ہو, جس میں واسطہ حس کے علاوہ ہو. اما یکون تلک الواسطہ بحیث لا تغیب عن الذہن عند حضور الاطراف او لا تکون, یا تو اس کے اندر وہ واسطہ اس طور پر ہوگا کہ وہ ذہن سے غائب نہیں ہوتا, عند حضور الاطراف, جب وہ اطراف یعنی موضوع محمول ذہن میں آ جائیں, او لا تکون کذالک, یا وہ ایسا نہیں ہوگا. بھئی ادھر دیکھیے وجہ حسر بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں پھر سنو, اگر طرفین اور نسبت کا تصور کافی ہو اس کا یقین کے اس پر یقین کے لیے تو اس کو اولیات کہتے ہیں, اگر واسطہ چاہیے تو واسطہ یا حصے ظاہری و باطنی ہوگا یا نہیں, اگر حصے ظاہری و باطنی ہے تو ان کو مشاہدات کہتے ہیں, اگر وہ واسطہ حصے ظاہری و باطنی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ یا تو وہ واسطہ اس طرفین کا ذہن میں تصور آتے ہی ذہن میں وہ واسطہ یعنی وہ دلیل بھی آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر وہ ذہن میں ساتھ ہی دلیل بھی آ جاتی ہے, جیسے میں نے کہا الاربعتو زوجن, اربعہ اور زوج کا تصور ذہن میں آتے ہی ساتھ ذہن میں دلیل بھی آ گئی کہ اربعہ زوج ہی ہے, کیونکہ زوج اس کو کہتے ہیں جس کے دو حصے ہوں اور جو دو حصوں میں تقسیم ہو سکے, اور چار بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, لہذا یہ زوج ہے. آپ کا ذہن اس پر یقین کر لیتا ہے, ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر ذہن اس کا یقین کر لیتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے. تو اگر یہ واسطہ وہ دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ہی ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو فطریات کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والاول اما ان یکون تلک الواسطہ بحیث لا تغیب عن الذہن عند حضور الاطراف او لا تکون کذلک, یا تو وہ واسطہ اس طور پر ہو کہ وہ ذہن سے غائب ہی نہیں ہوتا جب وہ اطراف یعنی موضوع محمول وغیرہ ذہن میں آ جائیں, او لا تکون کذلک, یا وہ ایسا نہیں ہوگا. والاول ہی الفطریات, اور پہلی قسم جو ہے وہ یہ فطریات ہے یعنی جس میں یہ واسطہ ذہن سے غائب نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں ان کو فطریات کہتے ہیں. وتسمى قضايا قياساتها معها, اور ان کو قضايا قياساتها معها کہتے ہیں, یعنی ایسے قضايا جن کے قیاسات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. والثانی, اور دوسری قسم, یعنی اگر وہ واسطہ ذہن سے میں حاضر نہیں ہوتا تو اما ان يستعمل فيه الحدث, یا تو اس میں حدث استعمال ہوگا, وہ انتقال الذہن من المبادی الى المطالب او لا يستعمل, یا تو اس میں حدث استعمال ہوگا یا استعمال نہیں ہوگا. حدث کیا کہتے ہیں, وہ اور وہ ذہن کا منتقل ہونا مبادی سے مطالب یعنی نتیجے کی طرف فوراً, تو حدث استعمال ہوگا یا استعمال نہیں. فالاول الحدثیات, تو پہلی قسم جس میں حدث استعمال ہو اس کو حدثیات کہتے ہیں. والثانی, اور دوسرا جس میں حدث استعمال نہ ہو. ان کان الحکم فیہ حاصلا باخبار جماعت یمتنع عند العقل تواتؤهم علی الکذب فہو المتواترات. دوسری قسم جن میں حدث استعمال نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں ان کان الحکم فیہ حاصلا, اگر اس میں حکم یعنی جزم حاصل ہوا ہے, بی اخباری جماعت, توجہ ہے, تو کہتے ہیں وسانی, دوسری قسم جو ہے, ان کان الحکم فیہ حاصلا بی اخباری جماعت یمتنع عند العقل, اگر وہ حکم جو ہے, حکم کیا معنی, حکم دیکھو اوپر بتایا تھا حکم کا کیا معنی, جزم یعنی جس میں جانب مخالف کا احتمال نہیں, اگر وہ یقین جو ہے فیہ حاصلا اس میں حاصل ہے, بی اخباری جماعت ایک ایسی جماعت کے خبر دینے کی وجہ سے, یمتنع عند العقل کہ ممتنع ہو عقل کے نزدیک, تواتؤهم علی الکذب کذب پر ان کا اتفاق کرنا, تواتؤ کا کیا معنی, اتفاق کر لینا, کہ علی الکذب جھوٹ پر اتفاق ان کا عقل کے نزدیک محال ہو, فہو المتواترات وہ متواترات ہیں, تو متواترات ہیں یعنی اگر حکم جو حاصل ہوا ہے وہ ایک ایسی جماعت کے خبر دینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ عقل محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیں گے, تو یہ کس میں سے ہے, متواترات میں سے ہے. وَإِن لَّمْ تَكُن كَذَٰلِكَ, اور اگر ایسا نہ ہو, بل حاصلا من کثرت التجارب, بلکہ وہ حکم حاصل ہوا ہے کثرت تجارب سے یعنی کثیر تجربوں سے, فہیت تجربیات, تو یہ तजरीबियात है। तजरीबियात रा के नीचे भी जेर है और बा के नीचे भी जेर है। वकद उलिमा बिजालिका हद कुल्ली वाहिदिन मिन्हा, और तहकीक इसके जरिए हर एक की हद यानी तारीफ का भी पता चल गया। कहते हैं ऊपर जो हमने वजह हसर जिक्र कर दी कि बदीहियात की छह किस्में क्यों हैं, इसी से हर एक की तारीफ भी आपको समझ में आ गई। फिर सुन लो वजह हसर। वजह हसर इन्होंने यह जिक्र की कि या तो कजिया बदीहिया के अंदर दोनों तरफेन और निस्बत का तस्वूर काफी होगा उसके यकीन करने के लिए, या काफी नहीं होगा। अगर यकीन करने के लिए वो काफी है तो उनको अव्वलियात कहते हैं, और अगर वो काफी नहीं उसके लिए वासिता भी चाहिए। तो अगर वो वासिता हिस्से बातिनी या हिस्से जाहिरी हो तो वो मुशाहदात हैं, और अगर वो वासिता हिस्से जाहिरी और बातिनी नहीं है तो फिर वो वासिता जब तरफेन का तस्वूर जहन में आए तो वासिता भी साथ जहन में आता है या नहीं आता, यानी जहन से गायब होता है या गायब नहीं होता। अगर गायब नहीं होता साथ ही वासिता भी आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, फितरियात। और अगर ऐसा नहीं कि वास्ता जहन में नहीं आता तो फिर इस सूरत में अगर उसमें हदस इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल नहीं, अगर हदस इस्तेमाल हो तो वह हदसियात हैं, अगर हदस इस्तेमाल नहीं तो फिर उसके अंदर या तो जो हुक्म हासिल हुआ है वो या तो बतरीके तवातुर के हासिल हुआ होगा या तवातुर के तरीके पर हासिल नहीं। अगर तवातुर के तरीके पर हासिल हुआ है यानी इतनी बड़ी जमात है कि अकल उनके इज्तिमा अल कज़िब को महाल समझती है तो वो मुतवातिरात की कबील से है, और अगर ऐसा नहीं है बल्कि कसरत तजारिब से एक हुक्म हासिल हुआ है, यकीन हासिल हुआ है, तो फिर इसको तजरीबियात कहते हैं। आगे देखिए कौलुहुल अव्वलियात का कौलीना, जैसे हमारा यह कौल है अलकुल्लु आजमु मिनल जुज़ी, यह अव्वलियात की मिसाल जिसमें किसी दलील की जरूरत नहीं, जहन इसको तसव्वुर करते ही इसको मान लेता है कि ऐसा ही है। कौलुहु वल मुशाहदातु, अमल मुशाहदातु जाहिरतु, भाई मुशाहदात किसके जरिए हासिल होते हैं, हिस्से जाहिरी और बातिनी के जरिए। कुछ बातें आंखों कानों जुबान नाक या लम्स के जरिए पता चलेंगी, वो हिस्से जाहिरी में दाखिल हैं, हिस्सियात जाहिरा में, और कुछ बातें हवासे बातिना के जरिए हासिल होती हैं कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है। अब देखो भूख और प्यास है, इसका पता आंखों से भी नहीं चलता, कानों से भी नहीं, जुबान से भी नहीं, सूंघने से भी नहीं, छूने से भी नहीं, तो इसका पता हवासे बातिना से चलता है। तो ये मुशाहदात की दो किस्में हैं। तो कहते हैं वल मुशाहदातु अमल मुशाहदातु जाहिरतु फका कौलिना अश्शम्सु मुश्रिकतुन वन्नारु मुहरिकतुन, तो मुशाहदात जाहिरा जो हैं जैसे कि हमारा कौल अश्शम्सु मुश्रिकतुन, सूरज चमकदार है भाई, ये हमें आंखों से नजर आता है तो ये हिस्से जाहिरी के जरिए हासिल है। वन्नारु मुहरिकतुन, आग जलाने वाली है, ये हमें कि लम्स के जरिए आग के करीब हम हाथ लेकर जाते हैं आग जलाती है उसको, तो यह हमें किसके जरिए पता चला, कुव्वते लामेसा के जरिए पता चला, तो यह हिस्सियात की कबील से हैं। वह अमल बातिना तो, और मुशाहिदात बातिना जो हैं का कौलिना, जैसे हमारा यह कौल है इन लना जुआउं अच्छन, कि हमें भूख है और प्यास है। देखो भूख और प्यास का पता किससे चला, हवासे बातिना से। कौलुहू व तजरीबियातु का कौलीना अस्सकमूनिया मुसहिलुल सफरा, अस्सकमूनिया सीन पर भी जबर है, काफ पर भी जबर है भाई, अस्सकमूनिया 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 मुसहिलुल सफरा। सफरा का जिक्र आया, याद रखो कदीम फलासफा के नजदीक, कदीम अतिब्बा के नजदीक, ये जो इंसानी बदन है इसके अंदर चार मादे हैं बुनियादी, इनको चार अखलात कहते हैं, अखलात अरबा, आखिर में त्वा है, त्वाज़ा, अखलात अरबा, और वो है खून, बलगम, सौदा, सफरा। खून, बलगम, सौदा, सफरा, सफरा स्वाद से है। सौदा देखो नाम से ही पता चल रहा है ये कोई स्याह रंग का मादा है, और सफरा ये अस्फर से है, जर्द से, तो ये कोई जर्द रंग का मादा है। सौदा अस्वद से है और सफरा अस्फर से, तो ये चार बुनियादी मादे हैं जिस्म में, खून, بلغم، سودہ اور سفرا، اور ان میں جسم میں ان کی ایک خاص تناسب ہے، مناسبت ہے. اگر اس مناسبت میں کمی بیشی ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ان میں بدبو پیدا ہو جائے، تعفن آ جائے، یہ متعفن ہو جائیں یہ اخلاط یا ان میں سے کوئی ایک، تو بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے. چنانچہ حکما اس کے ذریعے پھر علاج کرتے ہیں، اور آج کل بھی حکما ہیں جو اس غذا کے ذریعے یا یہ جو طب یونانی کی دوائیاں ملتی ہیں یہ اسی طریقہ علاج پر مبنی ہیں. کسی کو کوئی بیماری ہوئی تو کہتے ہیں بھئی اس کے اندر سفرا زیادہ ہو گیا ہے، کسی میں کوئی بیماری ہوئی اس میں سودا زیادہ ہو گیا ہے. دیکھو وہ تناسب تھا، ایک مقدار تھی، وہ مقدار ایک چیز کی بھی بڑھ جائے گی تو انسان بیمار ہو جائے گا، یا ان میں سے کسی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو بھی انسان بیمار ہو جائے گا. اور ایسا زبردست علاج کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. دوائی دیتے ہیں، چند دن میں آپ کی طبیعت بہترین ہو جائے گی. تو اللہ نے علاج کے عجیب طریقے اور اسباب بنا دیے ہیں بھائی، کتنے ہی طریقے ہیں علاج کے بھائی. ان کو اخلاط اربعہ کہتے ہیں بھائی، اخلاط اربعہ. تو اس میں سے یہ سفرا کا ذکر آیا. میں نے بتایا ان میں سے کوئی بھی جسم میں زائد ہوگا تو انسان بیمار ہو جائے گا. تو مثلا کسی کے جسم میں سفرا کی زیادتی ہو گئی، سفرا بڑھ گیا، تو کہتے ہیں یا وہ بدبودار ہو گیا، اب وہ اپنی جگہ سے نکلے گا، بدن کے اندر پھیلے گا اور انسان بیمار ہو جائے گا. تو چنانچہ اس کو پھر ایسی دوائی دیتے ہیں کہ وہ سفرا پخانے کے راستے بدن سے نکل جائے. تو اس کے لیے ایک پودا ہے سقمونیا، کہتے ہیں وہ سقمونیا اس کو دیتے ہیں اور اس سے اس کو دست لگ جاتے ہیں اور وہ سفرا بدن سے خارج ہو جاتا ہے اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے. تو یاد دیکھیے، کہتے ہیں وَتَّجْرِبِيَّات قَوْلُهُ وَتَّجْرِبِيَّاتُ كَقَوْلِنَا، جیسے ہمارا یہ قول السقمونی یا مسحل للسفرا، مسحل دست آور بھائی، جس سے انسان کو دست لگ جائیں. کہ سقمونیا مسحل ہے، دست آور ہے، للسفرا، کس کے لیے؟ سفرا کے لیے. دیکھو اب یہ تجربوں سے پتا چلا، حکما نے تجربے کیے، ان کو اندازہ ہوا، کئی لوگوں کو سقمونیا دیا اور ہر ایک پر ایک ہی جیسا نتیجہ آیا، اس سے انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ معلوم ہوا سقمونیا دیں گے تو سفرا خارج ہوگا بدن سے اور مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو السقمونیا مسحل للسفرا، سقمونیا جو ہے وہ دستاور ہے سفرا کے لیے. قوله والحدثیات، یہ دال ساکن ہے بھائی، کا قولینا نور القمر مستفاد من نور الشمسی، جیسے ہم کہتے ہیں چاند کی روشنی جو ہے مستفاد، یہ حاصل ہوتی ہے من نور الشمسی، سورج کی روشنی سے. دیکھو یہ ذہانت نے ہمیں بتلایا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے. عام آدمی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن جو ذہین ہوگا ذرا غور کرے گا اس کو پتا لگ جائے گا چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. بھائی کس طرح؟ بھائی آپ خود غور کرتے ہیں کہ چاند کبھی یہ دیکھو باریک سا کمان کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے. اگر اس کی اپنی روشنی ہوتی یہ تو ہر وقت پورا چمکتا رہتا، معلوم ہوا اس کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج ہی کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے اور اس کے جس حصے پر روشنی نہیں پڑتی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور جس حصے پر روشنی پڑتی ہے وہ سفید اور چمکدار ہوتا ہے. تو یہ چاند روشنی کس سے حاصل کرتا ہے؟ سورج سے. اگر اس کی اپنی روشنی ہوتی یہ پورا کا پورا گول ہر وقت ہمیں گول دکھائی دیتا، چمکدار دکھائی دیتا، لیکن کچھ حصے کبھی روشن ہوتے ہیں اور کبھی تاریک ہوتے ہیں، معلوم ہوا یہ اس کی اپنی روشنی نہیں. تو یہ کس نے بتایا؟ حدث نے. حدث نے قوله والمتواترات، اور متواترات کا قولینا، جیسے ہمارا یہ قول مکہ تو موجود، مکہ موجود ہے، مکہ مکرمہ مبارک شہر موجود ہے. اب دیکھو ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے گیا ہو، اور جو نہیں گئے دیکھو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مکہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خبر دیں اتنے لوگوں نے کہ ذہن فوراً تسلیم کر لیتا ہے کہ جب اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں تو یقیناً یہ بات سچی ہے، کوئی شہر مکہ موجود ہے جہاں بیت اللہ ہے اور تمام مسلمان حج کے لیے وہاں جاتے ہیں. का कौल इना मक्का तो मौजूद है तुम, जैसे हमारा यह कौल के मक्का मौजूद है। ये जुमले पर आप गौर कर रहे हैं, मक्का तो मौजूद है तुन। याद रखो अरबी में कुछ लफ्ज हैं जिन पर अरब अलिफ्लाम दाखिल नहीं करते, उसको अलिफ्लाम के बगैर इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं में से एक लफ्ज मक्का है। मक्का, इस मक्का पर अरबी में अलिफ्लाम दाखिल नहीं करते, अरब दाखिल नहीं करते। तो आपने भी कभी लिखना हो तहरीर में कोई जगह आ जाए तो वहां कभी मक्का के लफ्ज पर अलिफ्लाम दाखिल न करें भाई। कौलहू वलफित्रियातु, मुसनिफ का कौल वलफित्रियात का कौल इना हमारा कौल, अल अरबातु ज़ौजुन, चार जो है जुफ्त है। फ़इन्नल हुक्म फीहि बिवासिततिन ला तगीबु अन ज़हनिका इंदा मुलाहज़त या तराफी हादल हुक्मी व हुवा लिन्क़िसामु बिमुतसावियैन। इधर देखिए भाई, भाई देखिए, अल अरबातु ज़ौजुन, अरबा का जहन में तसव्वुर आया और साथ ज़ौज का तसव्वुर आया और जहन ने फौरन मान लिया कि अरबा जो है वो जुफ्त है। लेकिन क्या बगैर दलील के या दलील के साथ? दलील के साथ, लेकिन वो दलील जहन से गायब नहीं थी। जैसे ही अरबा और ज़ौज का तसव्वुर जहन में आया, साथ ही दलील भी आ गई कि ज़ौज तो उसको कहते हैं जिसके दो बराबर हिस्से होते हैं और अरबा के भी दो बराबर हिस्से होते हैं, इसलिए ये भी क्या है? ज़ौज है। जहन ने इस पर यकीन कर लिया, मान लिया। का कौलिना हमारा यह कौल, अल अरबातु ज़ौजुन फ़इन्नल हुक्म फीहि बिवासिततिन ला तगीबु अन ज़हनिका, इसलिए क्योंकि हुक्म जो है इसके अंदर वो एक ऐसे वासिते के जरिए है जो आपके जहन से गायब नहीं होता। इंदा मुलाहज़ति अतराफ हादल हुक्म, जिस वक्त आप इस हुक्म के अतराफ को मुलाहजा करें, यानी मौजू और महमूल को जब आप मुलाहजा कर लें तो फिर वो वासिता भी साथ ही आपके जहन में आ जाता है और गायब नहीं होता। तो ऐसा वासिता है जो आपके जहन से गायब नहीं होता। भाई वो क्या वासिता है? कहते हैं वह हुवल इनकिसामु बिमुतसावियैनी, और वो तकसीम होना है दो बराबर हिस्सों में। जैसे ही अल अरबातु ज़ौजुन आपके जहन में आया, साथ ही ये वासिता भी आ गया कि चार दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, इसलिए ये जुफ्त है। कौलहु सुम्म इनकान इला आखिरिही अलहद्दुल औसतु, अब दलील लिम्मी और इन्नी का जिक्र करने लगे हैं। मैंने बताया था कि ये जो हद औसत है ये वासिता है असगर के लिए अकबर के इस बात का। असगर तो कहां था? सुगरा में, और अकबर कहां था? कुबरा में। नतीजे में दोनों मिल गए, असगर मौजू बन गया और अकबर महमूल बन गया। ये दोनों को किसने मिलाया? हद औसत ने। तो वह हद औसत जो है इसलिए उसको वासिता फिल इस बात और वासिता फिल तस्दीक। ये देखो, इधर देखिए, ये जो नतीजा आया, नतीजा कभी कजिया मुजिबा होता है और कभी सालिबा, और दलील के जरिए नतीजे को साबित किया जाता है। तो नतीजे के अंदर जो निस्बत होगी वो इजाबिया भी हो सकती है और सलबिया भी। कभी निस्बत इजाबिया को साबित करना आपका मकसद होता है और कभी निस्बत सलबिया को, और इस निस्बत इजाबिया और सलबिया को साबित करने में वासिता कौन बनता है? हद औसत। इसलिए उसको वासिता फिल इस बात और वासिता फिल तस्दीक कहते हैं। वो इस बात का वासिता बना। ये जो इस बात है किसके अंदर? नतीजे के अंदर। यही जो नतीजे की जो तस्दीक आई, तस्दीक हासिल हुई, इसमें वासिता कौन है? हद औसत। इसलिए उसको वासिता फिल इस बात भी कहते हैं और वासिता फिल तस्दीक भी कहते हैं कि इसकी वजह से यह नतीजे का इस बात या नतीजे की तस्दीक हासिल हुई। भाई कहते हैं कौलहु सुम इन काना इला आखिरी ही अलहदुल औसतु फिल बुरहानी बल फी कुल कियासिन, कि हद औसत बुरहान के अंदर बल्कि हर कियास के अंदर लाबुद्द अन यकून इल्लतन लिहुसूल इल्म बिन निस्बत इजाबियति अव सलबियति अलमतलूबति फिन नतीजति। कहते हैं बुरहान में, भाई बात चल रही है कियास बुरहानी की, और उसमें नतीजे तक कौन पहुंचाती है? हद औसत। तो शारह बतला रहे हैं कि सिर्फ बुरहान ही नहीं, हर कियास के अंदर नतीजे तक कौन सी चीज पहुंचाती है? हद औसत। यह माना है कि अलहद उल औसत फिल बुरहानी, हद औसत कियास बुरहानी में, बल फी कुल कियास, बल्कि हर कियास में, लाबुद अन यकून इल्लतन लिहुसूल इल्म, वो जरूरी है कि वो इल्लत हो उस इलम के हासिल होने की। कौन सा इलम? बिन निस्बतिल ईजाबियति अविस सल्बियतिल मतलूबति फिन नतीजति, वो निस्बत ईजाबिया या सल्बिया जो मतलूब होती है नतीजे में, वो निस्बत ईजाबिया या सल्बिया जो नतीजे में मतलूब होती है, उसका इलम हासिल होने की इल्लत क्या चीज होती है? हद औसत। तवज्जो है, फिर तर्जमा सुने। الحد الاوسط في البرهان بل في كل قياس لا بد ان يكون عله لحصول العلم بالنسبه الايجابيه او السلبيه المطلوبه في النتيجه، کہ حد اوسط جو ہے وہ برہان میں بلکہ ہر قیاس میں ضروری ہے کہ وہ علت ہو اس نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کے جو نتیجے میں مطلوب ہوتا ہے اس کے حاصل ہونے کی وہ علت ہو، यानी वो जो इलम नतीजे में हासिल हुआ है निस्बत इजाबिया या निस्बत सल्बिया का जो कि नतीजे में मतलूब था उसकी इल्लत जो है वो हद औसत होती है। वलिहादा युकालु लहुल वासिततु फिल इस्बात वल वासिततु फित तस्दीक, और इसी वजह से इस हद औसत को वासिता फिल इस्बात और वासिता फित तस्दीक भी कहते हैं। فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ وَاسِطَةً فِي الصُّبُوتِ أَيْضًا، अगर इसके साथ साथ अगर ये वासिता सुबूत में भी हो। भाई इधर देखिए, एक है हद औसत दलील के अंदर, दलील के अंदर ये हद औसत ने हमें कहां तक पहुंचाया? नतीजे तक, यानी ये हद औसत इल्लत बन रही है नतीजे की। अगर वाकई में भी ये इस नतीजे की इल्लत हो तो इसको क्या कहेंगे? दलीले लिम्मी। और अगर ऐसा ना हो तो इसको दलीले इन्नी कहेंगे। ये माना है फइन काना मा ज़ालिका वासिततन फिस सुबूति अयज़न, तो इसके साथ अगर वो सुबूत में भी वासिता हो। क्या माना सुबूत में भी वासिता हो? ऐ इल्लतन लितिल्कन निस्बतिल ईजाबियति अविस सल्बियति फिल वाकई वफी नफ्सिल अमरी, यानी वो इल्लत हो उस निस्बत ईजाबिया या सल्बिया की वाक और नफ्सुल अमर में भी। कताफुनिल अखलाती, जैसे अखलात का बदबूदार होना, जैसे कि अखलात का वो चार अखलात जो है उनका बदबूदार होना। फी कौली का, आपके इस कौल में, हादा मुताफिनुल अखलाती, ये शख्स जो है इसके अखलात बदबूदार हैं। व कुल्लु मुताफिनुल अखलाती फहुआ महमूमुन, और हर वो शख्स जिसके अखलात बदबूदार हों, फहुआ महमूमुन, तो उसको बुखार होता है। नतीजा या फहाजा महमूमुन, तो इसको बुखार है। अब मुझे बताइए, बुखार की वजह से अखलात बदबूदार होते हैं या अखलात के बदबूदार होने की वजह से बुखार होता है? अखलात के बदबूदार होने की वजह से। तो देखो, इन्होंने जो कियास में मुताफिनुल अखलात जो है वो दोनों मुकदमों में आ रहा है, मालूम हुआ वो हद औसत है। मालूम हुआ ये इल्लत है किस चीज की? हां, इल्लत है ये जो नतीजा आया फहादा महमूमुन, इसकी इल्लत क्या इल्लत है? अखलात का बदबूदार होना। ये तो कजिए में है, अगर वाकई में भी ऐसा हो तो इसको क्या कहेंगे? दलीले लिम्मी। और वाकई में भी ऐसा ही है तो ये कौन सी दलील हुई? दलीले लिम्मी हुई। तो कहते हैं फल बुरहानु हीन इज़ी युसम्मल बुरहान लिम्मिया, तो उस वक्त इस बुरहान को जो है बुरहाने लिम्मी कहते हैं। लिदलालतिही अलामा हुआ लिम्मुल हुक्मी व इल्लतुहु फिल वाकई, इबारत पर नजर है। लिदलालतिही, इस वजह से कि ये बुरहान दलालत करती है। अलामा हुआ उस चीज पर, लिम्मुल हुक्मी, लिम्मुन का माना है इल्लत, आगे अतफे तफसीरी है व इल्लतुहु ऐ इल्लतुल हुक्मी। ये इल्लतुहु हाजमीर किसको राजे? हुक्म को। तो ये क्या हुआ? मा हुआ लिम्मुल हुक्मी व इल्लतुल हुक्मी, तो ये इल्लतुल हुक्म मातूफ है और ये अतफे तफसीरी है। ये माना बयान कर रहा है कि लिम्मुन का क्या माना है? इल्लत, इल्लत। لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا هُوَ لِمُّ الْحُكْمِ وَعِلَّتُهُ فِي الْوَاقِعِ, اس وجہ سے کیونکہ یہ برہان دلالت کر رہا ہے اس چیز پر جو حکم کی علت ہے واقعے میں. وَإِلَّمْ يَكُنْ وَاسِطَةً فِي الثُّبُوتِ, اور اگر وہ واسطہ یعنی وہ جو حد اوسط ہے وہ واسطہ فی ثبوت نہ ہو, اگر وہ واسطہ, بھئی دو سطریں پہلے بھی آیا تھا فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ وَاسِطَةً فِي الثُّبُوتِ, اگر وہ کیا ہو واسطہ فی ثبوت ہو, کیا معنی واسطہ فی ثبوت, آگے بتلایا تھا عِلَّةً لِتِلْكَ النِّسْبَةِ الْإِيجَابِيَّةِ أَوِ السَّلْبِيَّةِ فِي الْوَاقِعِ, کہ واقعے میں بھی وہ اس نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کی علت ہو. اب آگے کہتے ہیں وہ علم یقن واسطہ تن فی ثبوتی, اور اگر وہ واسطہ فی ثبوت نہ ہو, بھائی کیا معنی واسطہ فی ثبوت نہ ہو, یعنی لم یکن علتن للنسبت فی نفس الامر, یعنی وہ جو حد اوسط ہے وہ نسبت کی علت نہ ہو فی نفس الامر واقعے میں. نفس الامر میں, نفس الامر اور واقعے کا ایک معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا, اور اگر وہ علت نہ ہو نسبت, اس نسبت کی جو نتیجے میں آئی ہے, فی نفس الامر کس میں, نتیج وہاں اس قیاس میں تو علت ہے حد اوسط, لیکن واقعے میں وہ علت نہیں ہے, یہ معنی ہے. یعنی لم یکن علتا للنسبت فی نفس الامر, یعنی وہ حد اوسط جو ہے اس نسبت کی علت نہیں ہے نفس الامر میں. فل برہان حین اذن یسمى برہان الان, تو اس وقت برہان کو برہان الان کہتے ہیں. حیث لم یدل الا علی انیت الحکم وتحققه فی ذہنی دون علیتہ للحکم فی الواقع, یہ عبارت ذرا ٹھیک کر لیں, بعض کتابوں میں عبارت غلط ہے بھائی, میری کتاب میں بھی غلط ہے, یہ اصلاح کر لیں بھائی. حیث لم یدل الا علی انیت الحکم وتحققہ فی ذہنی, فی ذہنی میری کتاب میں فی الواقع ہے, واقع کی جگہ ذہن کا لفظ ہونا چاہیے. آگے دون علیتہ میری کتاب میں ہے, صحیح یوں ہے دون علیتہ للحکم فی الواقع, اسی طرح آپ کی کتابوں میں دون علیتہ للحکم فی الواقع, یہ ساری عبارت ٹھیک کریں بھائی ورنہ حل نہیں ہوگی اب جگہ. دون علیتہ للحکم فی الواقع, دون علتہ کی جگہ کیا کر دیا, دون علیتہ للحکم فی الواقع, اور پیچھے آیا تھا الا علی انیت الحکم وتحققہ فی الذہن, فی الذہن کر لی اصلاح. اچھا تو اس کو برہان انی کہتے ہیں بھائی, کیوں کہتے ہیں, حیث لم یدل, کیونکہ اس نے دلالت نہیں کی, الا علی انیت الحکم مگر حکم کی انیت پر, بھئی کیا معنی حکم کی انیت, آگے عطف تفسیری ہے, وتحققہ فی الذہن ای تحقق الحکم, حکم کی انیت اور حکم کے تحقق پر, انیت کا معنی تحقق ہے, میں نے بتلایا تحقق کا کیا معنی, ثبوت اور وجود, ثبوت اور, دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت دن ہے, اور جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے, نتیجہ کیا نکلا, اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو نتیجے میں علت آ گئی, اور حد اوسط کیا تھا, معلول تھا, معلول کیا تھا, دن, چونکہ دن موجود ہے اس سے ثابت ہوا علت بھی موجود ہے, تو اس حد اوسط نے ذہن کے اندر ایک چیز کے ثبوت پر دلالت کی کہ سورج کیوں نکلا ہوا ہے, کیونکہ دن ہے, واقعے میں یہ اس کی علت نہیں ہے, واقعے میں اس کا برعکس ہے, سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے, دن کے لیے. تو دلیل انی کو انی کیوں کہتے ہیں, کیونکہ عبارت پہ نظر رکھو, کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے علی انیت الحکم, کس چیز پر, حکم کی انیت, کیا معنی, ای وتحقق الحکم فی الذہن, ذہن میں حکم کے ثبوت اور وجود اور تحقق پر, ذہن میں ایک حکم ثابت ہے اور ذہن میں ایک حکم موجود ہے, صرف اس پہ دلالت کرتا ہے, واقعے میں اس کے ثبوت پر دلالت, واقعے میں سورج اس لیے نہیں نکلا ہوا کیونکہ دن ہے, بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے بھائی. تو برہان لمی کو لمی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو مختصر لفظوں میں وہ عبارت پہ نظر رکھیں، لدلالتہ علی ما ہوا لم الحکم وعلتہ فی الواقع، یہ یاد رکھ لینا. اور انی دلیل انی کو دلیل انی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یسمى برہان الانی حیث لم يدل الا علی انیت الحکم وتحققه فی الذہن دون علیته للحکم فی الواقع. اب ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں فل برہان حین اذن یسمى برہان الانی، تو اس وقت برہان کو جو ہے برہان الان برہان انی کہتے ہیں، حیث لم يدل الا علی انیت الحکم وتحققه فی الذہن، کیونکہ یہ دلالت نہیں کرتی مگر حکم کی انیت اور اس کے تحقق فی الذہن پر، صرف اس پر دلالت کرتی ہے. دون علیتہ للحکم فی الواقع، واقع میں اس حکم کے لیے علت ہونے پر دلالت نہیں کرتی. سوا ان کان الواسطہ حین اذن معلولا للحکم کل حما، برابر ہے کہ وہ واسطہ. اچھا بھائی، اب یاد رکھو، ادھر دیکھیے، دلیل لمی میں علت کے ذریعے استدلال ہوگا کس پر؟ معلول پر. اور دلیل انی میں معلول کے ذریعے استدلال ہوگا کس پر؟ علت پر. علت پر، یہ آسان لفظوں میں ہے. دلیل انی میں تھوڑی تفصیل یاد رکھنا، دلیل انی میں یا تو معلول کے ذریعے استدلال ہوگا علت پر، توجہ ہے، یا ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال ہوگا جب دونوں ایک ہی علت کے معلول ہوں، توجہ ہے. دلیل لمی میں علت کے ذریعے استدلال ہوگا کس پر؟ معلول پر. جبکہ دلیل انی میں معلول کے ذریعے علت ہی پر استدلال نہیں ہوتا، بلکہ معلول کے ذریعے علت پر بھی استدلال ہو سکتا ہے اور ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر بھی استدلال ہو سکتا ہے. ایک مثال تو گزر گئی، اس وقت دن موجود ہے، اور جب دن موجود ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، تو معلول کے ذریعے استدلال ہوا کس پر؟ علت پر. یہ بھی دلیل انی ہے. اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ ایک ہی علت کے دو معلول ہیں، تو جب ایک معلول موجود ہے تو اس کا کیا مطلب؟ دوسرا بھی ہوگا، کیونکہ اس معلول کا وجود تبھی پایا جاتا ہے جب علت ہوتی ہے، اور جب علت کے ہوتے ہوئے یہ معلول ہے تو اس علت کا ایک اور معلول بھی تو ہے. توجہ ہے، جب ایک علت کے دو معلول ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ایک معلول موجود ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرا بھی موجود ہوگا، کیونکہ یہ معلول کیوں موجود پہلا؟ کیونکہ علت ہے، اور اس علت کے ساتھ صرف یہی معلول ہے یا ایک اور بھی ہے؟ ایک اور. تو جب یہ معلول موجود ہے معلوم ہوا علت موجود ہے، اور جب علت موجود ہے معلوم ہوا دوسرا معلول بھی موجود ہوگا. تو ایک معلول سے دوسرے معلول پر استدلال کرنا جبکہ یہ دونوں معلول ایک ہی علت کے ہوں. بھائی دیکھو، ایک ہے سورج کا نکلنا اور ایک ہے دن کا ہونا اور ایک ہے اس جہان کا روشن ہونا. سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا اور جہان روشن بھی ہوگا، یہ دونوں معلول ہیں سورج نکلنے کے. کون کون سے دو معلول ہیں؟ دن کا ہونا اور جہان کا، یا یوں کہو دنیا کا روشن ہونا، دنیا کا روشن ہونا. اب میں آپ کے سامنے قیاس ذکر کرتا ہوں. اس وقت دن نکلا ہوا ہے، اس وقت دن ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت دنیا روشن ہے. پھر سنو، اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت دنیا روشن ہے. تو ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال کیا گیا، تو یہ کیا ہے؟ دلیل انی ہے، یہ بھی دلیل انی ہے. اب وہی دو صورتیں ذکر کریں گے، اور پھر ان میں سے یاد رکھنا، یہ جو دو قسمیں ہیں، دو قسمیں دلیل انی کی، کون سی دو قسمیں؟ معلول کے ذریعے علت پہ استدلال ہوگا، یا ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال ہوگا. ان میں سے جو پہلی قسم ہے، معلول کے ذریعے علت پر استدلال، اس کو دلیل کہتے ہیں. دلیل انی کی دو قسموں میں سے پہلی قسم جس میں معلول کے ذریعے استدلال ہو کس پر؟ علت پر، اس کو دلیل کہتے ہیں. جبکہ ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال ہو اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے بھائی. البتہ اس میں دو علم حاصل ہوتے ہیں، ایک معلول سے دوسرے معلول کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ معلول موجود تو دوسرا معلول بھی موجود، और नीज ये भी पता चल जाता है, मालूम है इनकी इल्लत भी मौजूद है। जब भी ये दोनों मालूल हैं, अगर वो ना होती तो ये दोनों भी ना होते। जैसे मैंने कहा इस वक्त दिन है, और जब दिन होता है तो दुनिया रोशन होती है, नतीजा क्या निकला कि इस वक्त दुनिया रोशन है। देखो दुनिया के रोशन होने का भी पता चल गया और सूरज के निकलने का भी पता चल गया, अगरचे उसका जिक्र कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सूरज के निकलने की वजह से ही तो ये दोनों चीजें थी, तो जब ये दोनों हैं तो जाहिर सी बात है सूरज भी है। देखिए आगे, सवा उन कान अल वासिता तो हीन इज इन मालूलन लिल हुक्मी, बराबर है कि वो वासिता उस वक्त मालूल हो लिल हुक्मी हुक्म के लिए, कल हुम्मा जैसे कि बुखार है, फी कौलिना हमारे इस कौल में, जैद उन महमूम उन जैद को बुखार है, वकुल्लु महमूमिन मुताफिनुल अखलाती, और हर बुखार वाला जो है उस वो मुताफिनुल अखलात होता है। नतीजा निकला फजैदुन मुताफिनुल अखलाती, तो जैद भी मुताफिनुल अखलात है। इधर देखिए, मैंने कहा जैद को बुखार है और जिस शख्स को बुखार होता है उसके अखलात बदबूदार होते हैं, नतीजा क्या निकला जैद के अखलात भी बदबूदार हैं। अब मुझे बताइए, अखलात बदबूदार होने से बुखार होता है या बुखार से अखलात बदबूदार होते हैं? अखलात की वजह से। लेकिन कियास के अंदर हमने बुखार के जरिए इस्तेदलाल किया, किस पर? अखलात के बदबूदार होने पर। तो ये मालूल के जरिए इस्तेदलाल किया किस पर? इल्लत पर। तो ये दलील इन्नी है। वकद युखस्सु हाजा बिस्मिद दलीली, और कभी इसको खास किया जाता है दलील के नाम के साथ, कभी इसको खास इस किस्म का नाम, कौन से किस्म? जिसमें मालूल के जरिए इस्तेदलाल हो, किस पर? इल्लत पर। दलील इन्नी की ये वाली किस्म, इसको क्या कहते हैं? दलील। औलम यकुन मालूलन, देखो पीछे आया था सवा उन कानतिल वासिता तो हीन इज़िन मालूलन लिल हुक्मी, बराबर है कि वो वासिता मालूल हो हुक्म के लिए। आगे आया औलम यकुन मालूलन लिल हुक्मी, या वो वासिता हुक्म के लिए मालूल न हो, कमा अन्नहु लैसा इल्लतन लहू, जैसे कि वो उसके लिए इल्लत नहीं है, बल यकूनानी मालूलैनी लिसालिसिन, बल्कि ये दोनों मालूल हैं एक तीसरी चीज के यानी इल्लत के। ये दोनों क्या हैं? मुझे बताइए, इधर देखिए, मैंने कहा इस वक्त दिन है और जब दिन होता है तो दुनिया रोशन होती है, नतीजा क्या निकला? इस वक्त दुनिया रोशन है। मुझे बताइए, क्या ये दुनिया दिन होने की वजह से रोशन होती है या सूरज की वजह से?
सूरज
की वजह से। तो यहां पर जो कियास बनाया उसमें एक मालूल को दलील बनाया किसके लिए? दूसरे मालूल के लिए। तो ये जो दुनिया पर रोशन होने का हुक्म आपने लगाया, नतीजे में जो हुक्म आया कि इस वक्त दुनिया रोशन, इस हुक्म की इल्लत, इस हुक्म की इल्लत दिन का होना नहीं है, इस हुक्म की इल्लत ये, यानी ये मालूल नहीं है इसका, ना ये उसका मालूल है ना ये उसकी इल्लत है। नहीं, तवज्जो, दिन है, इस वक्त दिन है और जब दिन होता है तो दुनिया रोशन होती है, नतीजा क्या आया?
इस वक्त
दुनिया रोशन है। अब जो हद औसत है, हद औसत क्या? दिन होना। ये दिन होना जो आगे नतीजे में हुक्म आया, ये दिन होना ना तो उसका मालूल है ना उसकी इल्लत है। ये दिन होना, तो वजह है कियास जहन में, क्या कियास है? इस वक्त दिन है और जब दिन होता है तो दुनिया रोशन होती है, नतीजा क्या निकला? इस वक्त दुनिया रोशन है। तो दिन होना हद औसत है, कियास में है इल्लत, और नतीजा क्या आया?
दुनिया रोशन।
तो एक है दिन का होना और एक है दुनिया का रोशन होना, ये दोनों, इन ये जो दिन का होना है ना तो इस नतीजे के लिए ना ये उसके लिए मालूल है और ना इल्लत है, ये ना उसके लिए मालूल है ना इल्लत है, बल्कि ये दोनों मालूल हैं एक तीसरी चीज के। ये माना है औलम यकुन मालूलन लिल हुक्मी, और या वो मालूल नहीं होगा उस हुक्म के लिए, कमा अन्नहु लैसा इल्लतन लहू, जैसे कि वो उसके लिए इल्लत भी नहीं है, बल यकूनानि मालूलैनि लिसालिसिन, बल्कि वो दोनों मालूल हैं एक तीसरी चीज के। वहादा लम यख्तस्स बिस्मिन, और इसका कोई खास नाम नहीं है। وَهَذَا لَمْ يَخْتَصَّ بِاسْمٍ اور یہ مخصوص نہیں ہے کسی نام کے ساتھ کما یقال جیسے کہا جائے هَذَا الْحُمَّى تَشْتَدُّ غِبًّا وَكُلُّ حُمَّى تَشْتَدُّ غِبًّا مُحْرِقَةٌ فَهَذِهِ الْحُمَّى مُحْرِقَةٌ حُمَّى بُخَار تَشْتَدُّ اشْتَدَّ اشْتَدُّ کے معنی تیز ہونا تیز ہونا سخت ہونا غِبًّا غِبًّا کا معنی ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن جیسے زرغبن تزدد حبن ایک دن چھوڑ کر ایک دن زیارت کیا کرو تو محبت بڑھے گی اور اگر روز ہی کسی سے ملتے رہو گے تو محبت ختم ہو جائے گی بھائی تو دیکھو قیاس سنو کہتے ہیں الحمہ تشتد غبن یہ والا جو بخار ہے الف لام کی جو اشارہ ہے خاص بخار کی طرف یہ بخار تشتد غبن یہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد تیز ہو جاتا ہے وکل حما تشتد غبن محرقتن اور ہر وہ بخار جو ایک دن چھوڑ کر تیز ہو جاتا ہے محرقتن وہ جلانے والا ہے محرقہ کا معنی ہے جلانا محرقہ جلانے والا یا تو اس کا معنی کر لیں جلانے والا ہے یعنی ختم کر دینے والا ہے وہ بخار جو ایک دن کم ہو اگلے دن پھر تیز ہو جائے پھر کم ہو پھر ایک دن بعد تیز ہو جائے کہتے ہیں یہ بخار جلانے والا ہے یعنی فنا کر دینے والا ہے یہ یوں کہ آسان لفظوں میں خطرناک ہے کیا کہو خطرناک ہے فنا کر دیں محرک کا معنی جلانے والا بھی محرک کا معنی فنا کر دینے والا بھی محرک کا معنی تکلیف دینے والا بھی توجہ ہے کیا کیا معنی جلانے والا اور فنا یعنی ختم کر دینے والا اور تکلیف دینے والا تو جو معنی آپ کو مناسب لگے وَكُلُّ حُمَّى تَشْتَدُّ غِبًّا اور ہر وہ بخار جو ایک دن چھوڑ کر تیز ہو جاتا ہے مُحْرِقَتٌ وہ فنا کر دینے والا ہے ختم کر دینے والا ہے یعنی یوں کو خطرناک ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے یا مُحْرِقَتٌ معنی کر لیں تکلیف دینے والا ہے یعنی تکلیف تو ہر بخار میں ہے لیکن وہ بخار جو ایک دن کچھ بہتر ہو اور اگلے دن پھر تیز ہو جائے یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا ہے کہتے ہیں پھر سنیے قیاس ھذہ الحمۃ تشتد غبا یہ بخار جو ہے ایک دن بعد تیز ہو جاتا ہے ھذہ الحمۃ تشتد غبا یہ بخار جو ہے ہر ایک دن کے بعد تیز ہو جاتا ہے یوں کہو یہ بخار جو ہے ہر دوسرے دن تیز ہو جاتا ہے وَكُلُّ حُمَّا تَشْتَدُّ غِبًا مُحْرِقَةٌ اور ہر ایسا بخار جو ہر دوسرے دن تیز ہو جائے وہ فنا کر دینے والا ہے وہ انسان کو ختم کر دینے والا ہے فَهَذِهِ الْحُمَّا مُحْرِقَةٌ تو یہ والا بخار جو ہے یہ فنا کر دینے والا ہے اب قیاس پر نظر ہے بھائی قیاس کیا تھا ھذہ الحمۃ تشتد غبا وکل حمۃ تشتد غبا محرقۃ حد اوسط کیا ہے ایک دن کے بعد بخار کا تیز ہونا اس کو علت بنایا قیاس کے اندر اس کو حد اوسط بنایا یعنی علت بنایا کس چیز کے لیے احراق کے لیے کس کے لیے احراق کے یہ خطرناک ہے فنا کر دینے والا ہے تو اشتداد غبن جو ہے اس کو علت بنایا قیاس کے اندر کس کے لیے احراق کے لیے حالانکہ اشتداد غبن جو ہے نہ وہ احراق کے لیے علت ہے نہ اس کا معلول ہے بلکہ یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری چیز یعنی علت کے اور وہ ہے اخلاط کا بدبودار ہونا اخلاط کے بدبودار ہونے کی وجہ سے کیا ہوا یہ بخار بھی اس میں اشتداد غبن ہے یعنی ایک دن چھوڑ کر اس میں پھر تیزی آتی ہے اور نیز یہ فنا کر دینے والا بھی ہے خطرناک بھی ہے تو کہتے ہیں فل اشتداد غبن لیس معلولا للاحراق ولا العکس تو اشتداد غبن وہ معلول نہیں ہے احراق کا ولا العکس اور نہ اس کا برعکس ہے یعنی احراق بھی علت نہیں ہے اشتداد غبن کا بلکہ لاہما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة عن العروق عروق جمع ہے عرق کی عرق رگ کو کہتے ہیں بدن میں جو رگیں ہوتی ہیں جن میں خون چلتا ہے بھائی کہتے ہیں بلکہ لاہما بلکہ یہ دونوں معلولان یہ دونوں معلول ہیں للصفراء المتعفنة اس بدبودار صفراء کے الخارجة عن العروق جو رگوں سے نکل آئی ہو سفرا کی زیادتی ہو گئی، بدبودار ہو گئی، رگوں سے نکل آئی، بدن میں پھیل گئی، تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، اس کو اس طرح کا بخار ہو جاتا ہے. قوله من المشهورات هي القضايا التي يطابق فيها آراء الكل. مشهورات کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا، یا تو اس میں تمام لوگوں کی رائے وہی ہوتی ہے یا بعض لوگوں کی. تمام لوگوں میں مشہور، یعنی ساری دنیا کے لوگوں میں ایک بات مشہور ہوتی ہے، یا بعض خاص علاقے والوں میں مشہور ہوتی ہے، یعنی اس علاقے والوں کی وہ رائے ہوتی ہے، سب کی رائے نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہی القضایا التی یطابق فیہا آراء الکل، یہ وہ قضیے ہیں جس میں تمام لوگوں کی رائے متفق ہوتی ہے. کا حسن الاحسان وقبح العدوان، جیسے احسان کا اچھا ہونا، وقبح العدوان اور ظلم کا قبیح ہونا، برا ہونا. عدوان کا معنی ظلم اور قبح کا معنی برا ہونا. کا حسن الاحسان وقبح العدوان، جیسے احسان یعنی نیکی کا اچھا ہونا، وقبح العدوان اور ظلم کا برا ہونا، اس کو تمام لوگ اچھا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں. او آراء طائفۃ، یا اس میں مطابق ہوتی ہے ایک خاص گروہ کی رائے، یعنی ان کی ہاں وہ بات مشہور ہوتی ہے. قبح ذبح الحیوانات عند اہل الہند، جیسے کہ حیوانات کو ذبح کرنا قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے. عند اہل الہند، ہند میں رہنے والوں کے نزدیک، یعنی ہندوستان میں رہنے والے مراد مسلمانوں کے علاوہ، باقی مذاہب والے جو ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں یا ہندو وغیرہ، ان کے نزدیک حیوانات کو ذبح کرنا قبیح ہے کہ آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو آپ ذبح کر رہے ہیں. یاد رکھنا، ایک ہے ذبح، ایک ہے ذبح. ذبح کا معنی ہے ذبح کرنا، یہ مصدر ہے، تو یہاں ذبح آپ نے پڑھنا ہے. کا قبح ذبح الحیوانات، اور ایک ہے ذبح. ذبح کا معنی وہ حیوان جس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ حیوان جس کو ذبح کیا جائے، جس کو ذبح کے لیے تیار کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبح. قرآن میں کس طرح اللہ فرماتے ہیں؟ ففدیناہ بذبح عظیم. دیکھو ذبح عظیم وہ حیوان مراد ہے بھائی. قوله والمسلمات هي القضايا التي سلمت من الخصم في المناظره، یہ وہ قضایا ہیں جو تسلیم شدہ ہوں فریق مخالف کی طرف سے مناظرے میں. او برهن عليها في علم واخذت في علم اخر على سبيل التسليم. مسلمات کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا، وہ قضیے جو فریق مخالف کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں، آپ جسے بحث کر رہے ہیں اس کے نزدیک تسلیم شدہ ہے، وہ ان کو تسلیم کرتا ہے چاہے سچے ہو چاہے جھوٹے. جب وہ تسلیم کرتا ہے، آپ اس کے ذریعے صغرا کبرا بنائیں گے اور اپنا دعوے کو ثابت کر دیں گے. تو کبھی وہ فریق مخالف کے نزدیک تسلیم شدہ ہوتے ہیں مسلمات، اور کبھی مسلمات ایسے قضیے جو کسی دوسرے علم میں ثابت شدہ ہیں، لیکن یہاں پھر ان کو دوبارہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھا کر اسی طرح استعمال کر لیا کہ یہ فلاں علم میں کیا ہیں؟ ثابت شدہ ہیں، تو یہاں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اس علم میں ثابت شدہ ہیں، لہذا یہاں پر بھی آپ ان کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ اگرچہ دوسرا علم ہے جہاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن کہاں سے اخذ کیے؟ اس علم میں وہ ثابت شدہ ہیں، تو مسلمات ہیں. کیا ہیں؟ مسلمات. یہ معنی ہے کہ او برہینہ علیہا فی علم، یا یہ کہ ان پر دلیل دی گئی ہے، یعنی ان کو ثابت کیا گیا ہے، فی علم کسی دوسرے علم میں، وہ اخذت فی علم آخرا اور ان کو لیا گیا کسی دوسرے علم میں، علی سبیل التسلیم تسلیم کے طریقے پر، یعنی ان کو تسلیم کرتے ہوئے. قوله من المقبولات هي القضايا التي تؤخذ ممن يعتقد فيه كالاولياء والحكماء. مقبولات بھئی وہ قضايا ہیں جن کو لے لیا جاتا ہے، ممن يعتقد فيه ان لوگوں سے جن کے بارے میں اعتقاد رکھا جاتا ہے، یعنی اچھا اعتقاد رکھا جاتا ہے، كالاولياء والحكماء جیسے اولیاء اور حکماء. وہ اولیاء کوئی بات بتاتے ہیں، لوگ اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ان کی اچھی رائے ہوتی ہے، یا حکما عقل مند لوگ کوئی بات بتاتے ہیں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی رائے ان کے بارے میں اچھی ہوتی ہے. قوله والمظنونات هي القضايا التي يحكم فيها العقل حكما راجحا غير جازم، یہ وہ قضایا ہیں جن میں عقل यहकुमु बिहा होना चाहिए भाई, बिहा है आपकी किताबों में, यहकुमु बिहा होना चाहिए भाई। ये वो कजाया हैं अल्लती यहकुमु बिहल आकलो, कि जिनका अकल जिनमें हुक्म लगाती है, अकल जिनका यानी फैसला करती है उनको मान लेती है, हुक्मन राजहन गैरा जाजिमिन, ऐसा हुक्म जो राजह होता है गैरा जाजिमिन और पुख्ता नहीं होता। भाई जन की बात हो रही है, जन किसको कहते हैं, जिसका इंसान को राजह यानी ज्यादा ख्याल होता है, जो मरजूह हो उसको क्या कहते हैं, वहम। जिस जानिब का ज्यादा ख्याल हो उसको जन, जिस जानिब का कम ख्याल हो उसको वहम। मसलन मुझे किसने कहा जैद आलिम है, मेरे जहन में 90% ख्याल है कि जैद आलिम है, लेकिन 10-15% यह ख्याल भी आ जाता है कि शायद वो आलिम ना हो। तो जिस चीज का ज्यादा ख्याल उसको कहते हैं जन्नुन, और यह तस्दीक की किस्म है, और वह जो थोड़ा सा 10-15% ख्याल है उसको वहम कहते हैं, और वो तसव्वुर की किस्म है। तो कहते हैं मजनूनात वही जिनमें जन होता है, अब बयान कर रहे हैं, ये अलकजाया लती यहकुमु बिहल अकलु, ये वो कजाया हैं कि अकल जिनका जिनका हुक्म लगाती है, हुक्मन राजहन गैरा जाजिमिन, ऐसा हुक्म जो राजह होता है गैरा जाजिमिन, जाजिम नहीं होता यानी इसमें जानिब मुखालिफ का ख्याल होता है। जाजिम तो वो था ना जिसमें जानिब मुखालिफ का ख्याल ना हो, लेकिन ये गैर जाजिम होता है यानी इसमें जानिब मुखालिफ का ख्याल होता है। वह मुकाबलतुहु बिल मकबूलात, इस पर एक इश्काल होता है, इश्काल ये कि आपने हमें बताया ए कि कयास खताबी में मकबूलात इस्तेमाल होते हैं और मजनूनात, मकबूलात भी जन का फायदा देते हैं और मजनूनात भी जन का, तो ये मकबूलात तो मजनूनात के अंदर दाखिल हो गए, फिर अलहदा जिक्र करने का क्या मतलब। तो बतलाया कि यहां जो मजनूनात और मकबूलात चूंकि एक दूसरे के मुकाबले में हैं, लिहाजा यहां मजनूनात से बाकी सारे जन इसमें दाखिल हैं सिवाय किसके, मकबूलात के, वो इसमें नहीं दाखिल क्योंकि वो इसके मुकाबले में है। ये इसी तरह है जैसे इंसान वैसे तो हैवान के अंदर दाखिल है, लेकिन अगर एक इंसान खड़ा और एक तरफ एक जानवर है, मैं आपसे कहता हूं हाजा इंसानुन व हाजा हैवानुन, तो अब आप यह ना कहेंगे भाई हैवान के अंदर तो इंसान भी दाखिल है, यहां हैवान किसके मुकाबले में है, इंसान, मालूम है इंसान के अलावा बाकी हैवान इसके अंदर दाखिल हैं, यहां दाखिल नहीं। तो यहां भी इसी तरह है, यह मजमूनात के अंदर यहां मकबूलात दाखिल नहीं है। तो कहते हैं वह मुकाबलतुहु बिल मकबूलाती, तो इसका मुकाबला करना मकबूलात के साथ, इन मुकाबलतिल आम में बिल खासी, ये आम का मुकाबला खास के साथ, ये इस कबील से है, फल मुराद बिही मासिवल खासी, तो इससे मुराद जो है खास के अलावा है, खास के अलावा यानी मकबूलात के अलावा बाकी मजमूनात इससे मुराद हैं। कौलहु मिनल मुखयलाती, यल कजाया लती ला युज़इनु बिहा नफ्सु, ये वो कजाया हैं जिन पर नफ्स इज़ान नहीं करता। मैंने अभी बताया इज़ान का क्या माना, मान लेना, नफ्स क्या कर ले एक चीज को, मान ले कि ऐसा है। तो ये जो मुखयलात होते हैं इनको नफ्स मानता नहीं है, वैसे एक ख्याली बात आई, कोई खुशी या गम वगैरह की कैफियत इंसान पर आ जाती है, लेकिन नफ्स इनको मानता नहीं, जानता ये सब क्या है, ख्याली शायरों की बातें हैं। तो कहते हैं ही अल कजाया लती ला युज़इनु बिहा नफ्सु, ये वो कजाया हैं जिन पर नफ्स इज़ान नहीं करता यानी इनको मानता नहीं, इनका एतिकाद नहीं करता। वलाकिन तता असरु मिनहा तरगीबन औ तरहीबन, लेकिन इनसे असर कबूल करता है तरगीब या तरहीब का। तरगीब का माना रगबत, तरहीब का माना डराना, यानी किसी चीज को शायर ने अच्छा बनाकर पेश कर दिया तो इंसान की उसमें रगबत हो जाती है, तो बड़ी अच्छी चीज है। और कभी किसी चीज को बड़ा ही खतरनाक या खौफनाक बनाकर पेश किया तो यह क्या करता है, तरहीब, इंसान को डरा देता है, इंसान को बुरी लगती है वो चीज। तो लेकिन इससे नफ्स जो है असर कबूल करता है तरगीब या तरहीब का। वह इदकतरना बिहा सजउन औ वजनुन, और जब इसके साथ सजा या वजन मिल जाए, याद रखिए वजन, मैंने बताया अशार का खास वजन होता है, और अशार आखिरी लफ्ज जो है, अशेर का आखिरी लफ्ज जो है उसका वजन भी खास होता है, और वो खास एक जैसे हरूफ पर खत्म होते हैं अशार। मसलन अगर कसीदे के पहले शेर के आखिर में लाम है तो पूरे कसीदे में आप देखेंगे हर शेर के आखिर में क्या रहा है, एक जैसा वजन होगा और आखिर में लाम आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, कसीदा लामिया। या आखिर में दाल है तो क्या कहेंगे, قصیدہ دالیہ, اور اگر آخر میں سین ہے تو قصیدہ سینیہ وغیرہ. تو یہ آخر میں ہر شعر کے آخر میں ایک جیسا وزن اور ایک جیسا حرف آتا ہے, اس کو قافیہ کہتے ہیں. شعر میں کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. اور اسی طرح کبھی عربی عام عبارت کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کلام کے ٹکڑے ہوتے ہیں, جیسے مقامات حریری وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, اور ان کا اختتام بھی ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو سجع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سجعن, سجعن. اور جیسے قرآن کے اندر بھی آیات کا اختتام ایک جیسے وزن لفظوں اور حروف پر ہوتا ہے, لیکن قرآن میں اس کو رعایت سجع نہیں کہتے, بلکہ قرآن میں اس کو رعایت فاصلہ کہتے ہیں بطور ادب کے. کیا کہتے ہیں؟ رعایت فاصلہ. اور باقی عام کلام میں سجع اس کو کہتے ہیں, سجعن بھائی. اور سجع اس لیے کیونکہ یہ کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں, تو لہذا قرآن کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں, تو اس کے لیے مفسرین پھر رعایت فاصلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو سجع ہوتا ہے عام کلام میں اور قافیہ ہوتا ہے شعر کے اندر. انہوں نے یہاں سجع کا لفظ استعمال کیا, قافیہ نہیں. اشارہ کر دیا کہ منطق والوں کے نزدیک اشعار کے خاص وزن ضروری نہیں ہے, وزن کے بغیر بھی ایک جیسے حروف پر ختم ہو رہا ہو تو بھی, بس البتہ خیال انوکھا ہونا چاہیے, بات انوکھی ہونی چاہیے تاکہ سب پر اثر پڑے. تو کہتے ہیں وَإِذَا اقْتَرَنَ بِهَا سَجْعٌ أَوْ وَزْنٌ كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ, اور اگر اس کے ساتھ سجع بھی مل جائے اور وزن بھی, جیسے کہ کما هُوَ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ, جیسے کہ آج کل یہ متعارف ہے, مشہور ہے, لَزْدَادَ تَاثِيرًا, تو البتہ یہ بڑھ جاتا ہے تاثیر کے اعتبار سے. یہ خیالی باتیں تاثیر کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں, یعنی ان کا اثر اور بڑھ جاتا ہے. وزن بھی ہے, سجع بھی ہے, اور پھر آواز بھی اچھی ہے, تو یہ خیالی باتوں کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. لزداد تاثیرن, لزداد تاثیرن اس میں لام تاکید کے لیے ہے, ازداد تاثیرن, تو وہ بڑھ جاتا ہے تاثیر کے اعتبار سے, یعنی اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. قوله وإما سفسطي منصوب إلى السفسطة, یہ سفسطة کی طرف منصوب ہے, وهي مشتقة من سوفسطا, اور یہ مشتق ہے کس سے؟ سوفسطا سے. معرب سوفائستا, یہ سوفائستا سے معرب ہے, یعنی عربی بنایا گیا ہے. معرب, عرب يعرب تعریب کا معنی ہے کسی لفظ کو عربی زبان میں داخل کرنا. تو یہ جو سوفسطا ہے یہ معرب ہے کس کا؟ صوفا استا, یعنی اصل میں صوفا استا تھا اور عربی میں اس کو صوفستا بنا کر شامل کر لیا گیا. لغت یونانیت, یہ یونانی زبان ہے. بمعنى الحکمت المموہتی ای المدلستی, اور یہ حکمت مموہ کے معنی میں ہے. حکمت مموہ یعنی جس میں سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بات کو خوبصورت بنایا جاتا ہے, اس کو آراستہ کیا جاتا ہے, تو یہ بمانے حکمت مموہ کے ہے. ایل مدلسا, دیکھا مموہ کا معنی مدلسا کے کیے, مدلسا جس میں فریب دیا جائے, دھوکہ دیا جائے. قوله من الوهميات هي القضايا التي يحكم فيها الوهم من غير المحسوس قياسا على المحسوس. وہمیات وہ قضایا ہیں جن میں وہم حکم لگاتا ہے غیر محسوس سے, قیاس کرتے ہوئے اس کو محسوس پر, یعنی غیر محسوس پر محسوس والا حکم لگا دیتا ہے. کما یقال, جیسے یوں کہا جاتا ہے, کل موجود فہو متحیز, ہر موجود چیز متحیز ہے. حیز کا معنی ہے جگہ بھائی, متحیز یعنی وہ چیز جو کسی جگہ میں ہو. بھئی دیکھیے, جو بھی چیز ہے اس نے فضا کی کسی جگہ کو پر کیا ہوتا ہے. جیسے جہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک فضا, ایک جگہ کو پر کیا ہوا ہے. آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اس جگہ دیکھو ہوا آ گئی. جیسے الماری ہے, دیکھو الماری خالی ہوتی ہے, اس کے اندر ہوا ہے, لیکن جب آپ کتابیں اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس خالی جگہ کو کس نے پر کر دیا؟ کتابوں نے. تو ہر کتاب نے ایک خاص جگہ کو پر کیا ہوا ہے, فضا کے اندر ہر کتاب نے ایک خاص جگہ کو پر کیا ہوا ہے. اب جیسے دیکھو الماری کے اندر آپ کتابیں رکھتے ہیں, अब एक खाने के अंदर फर्ज करो 50 किताबें रखी जाती हैं, तो पहले यह जगह क्या थी? खला थी, यूं कहो खला, खाली थी। अब फिर एक एक किताब ने क्या कर दिया? इस फजा को पुर कर दिया। तो जो भी जिस्म होता है उसने खाली जगह पुर की होती है, खाली जगह पुर की होती है। जैसे आपके सामने एक मोटी सी किताब मौजूद हो, देखो इस किताब ने एक फजा पुर की हुई है, आप इस किताब को उठाएंगे तो यहां आप क्या, ये फजा क्या हो गई? खाली। ये जगह तो खाली हुई, लेकिन इस किताब को तो जहां भी लेकर जाएंगे इसका कुछ ना कुछ हुजम है, ये हर जगह क्या करेगा? फजा को, कुछ ना कुछ फजा ये हमेशा पुर करेगा। चुनांचे संदूक के अंदर आप किताबें रखते हैं, हर किताब एक खास फजा को पुर करती है। चुनांचे संदूक के अंदर अगर 50 किताबों की गुंजाइश है तो 50 से ज्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी ही फजा है जिसको हर एक किताब पुर करती चली जा रही है। बात समझ में आ गई? तो एक होती है जगह, जगह और चीज है, और हयिज माने वो जगह जिसको किसी चीज ने पुर किया हो। आपका वजूद है, आपने एक खास फजा के हिस्से को पुर किया हुआ है। तो जिस चीज ने किसी फजा को पुर किया हो उसको मुतहय्यिज कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहय्यिज। तो यहां कहते हैं कि जैसे वहम जो है वो गैर महसूस पर महसूस वाला हुक्म लगा देता है। गैर महसूस पर कौन सा हुक्म लगा देता है? महसूस वाला। यहां महसूस से कौन सा महसूस मुराद है? मैंने बताया था जो आंखों से नजर आए। एक तो वह महसूसात हैं जिनको हम हवा से खमसा जाहिरा के जरिए हम महसूस करते हैं, उसमें आवाजें भी दाखिल, उसमें जायका भी दाखिल, उसमें बू भी दाखिल, लेकिन आम लोग जो है महसूस जो है जो आंखों से नजर आए उसको कहते हैं। तो यहां महसूस किस माना में है? वो चीज जो आंखों से नजर आए। वहम जो है वो गैर महसूस चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको कियास कर लेता है किस पर? महसूस पर, और उस पर भी वही हुक्म लगा देता है, उस पर भी वही हुक्म लगा देता है कि कुल, जैसे यहां है कुल्लो मौजूद इन फहुआ मुतहय्यिज, हर मौजूद चीज जो है मुतहय्यिज है, यानी उसने एक फजा को, एक खास जगह को पुर किया हुआ है। और यहां याद रखना ये मुतहय्यिज जो इस्तेमाल करते हैं अमूमन ऐसी चीज के लिए जिसकी तरफ इशारा किया जा सके। तवज्जो है, जिसकी तरफ इशारा हिस्सिया किया जा सके। देखो आपके सामने एक मोटी किताब है, इसने एक खास फजा पुर की हुई है, इसकी तरफ मैं हाथ से इशारा करके कह सकता हूं हाजा किताबुन, ये क्या है? किताब। तो हर वो चीज जो मुतहय्यिज होगी उसकी तरफ हाथ के जरिए क्या किया जा सकता है? इशारा किया जा सकता है। तो मुतहय्यिज से यहां मुराद है जिसकी तरफ हाथ से इशारा किया जा सके। तो देखो नफ्स ने क्या हुक्म लगाया, हर मौजूद चीज मुतहय्यिज है, यानी उसकी तरफ हाथ के जरिए इशारा किया जा सकता है। हालांकि ये गलत हुक्म लगाया वहम ने भाई, हर मौजूद चीज की तरफ इशारा, हर जिस्म वाली चीज, हर चीज जिसका जिस्म हो उसकी तरफ तो इशारा किया जा सकता है, लेकिन हर मौजूद चीज की तरफ इशारा वह मुतहय्यिज नहीं है। जैसे हवा, देखो हवा की तरफ आप इशारा करके कह सकते हैं यह हवा है, नहीं। या जैसे जिन्नात हैं, जिन्नात की तरफ आप इशारा कर सकते हैं, नहीं। तो हर मौजूद चीज को मुतहय्यिज करार देना यह वहम का गलत फैसला है भाई। वहम ने क्या किया? गैर महसूस जिन्नात और हवा जो गैर महसूस हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उन पर कौन सा हुक्म लगा दिया? महसूस वाला जो आंखों से दिखाई देते हैं, आंखों से जो दिखाई देते हैं उनकी तरफ तो हाथ के जरिए इशारा किया जा सकता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देते उन पर, उनकी तरफ हाथ से इशारा नहीं किया जा सकता। तो जैसे यह कहा गया कमा युकालु कुल्लु मौजूदिन फहुआ मुतहय्यिजुन, हर मौजूद चीज जो मुतहय्यिज है, यानी उसकी तरफ इशारा हिस्सिया किया जा सकता है। हालांकि यह बात तो दुरुस्त नहीं है भाई, हर मौजूद की तरफ तो इशारा हिस्सिया नहीं किया जा सकता। इशारा हिस्सिया तो सिर्फ उस चीज की तरफ किया जा सकता है जिसका अपना जिस्म होगा। जब जिस्म होगा वह मुतहय्यिज होगी, उसने फजा में किसी जगह को पुर किया होगा, जब पुर किया होगा तो उसकी तरफ इशारा हिस्सिया हो सकता है, और अगर जिस्म नहीं तो फिर उसकी तरफ इशारा नहीं हो सकता, चाहे वह मौजूद ही क्यों ना हो। जैसे हवा, वो भी मौजूद है, जिन्नात वो भी मौजूद हैं, उनका भी वजूद है, लेकिन इनकी तरफ इशारा हिस्सिया नहीं हो सकता। तो देखो ये वहम ने एक झूठा हुक्म लगा दिया, गैर महसूस को किसके हुक्म में उतार लिया? महसूस के। जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देती यानी हवा और जिन, उन पर महसूस वाला हुक्म लगा दिया कि हर मौजूद चीज की तरफ इशारा हिस्सिया किया जा सकता है, हालांकि हर वो चीज जो मौजूद हो यानी जिसका वजूद हो उसकी तरफ इशारा हिस्सिया नहीं किया जा सकता है। इशारा हिस्सिया सिर्फ किसकी तरफ किया जा सकता है, जिसका अपना, जिसका जिस्म हो, जो मुतहय्यिस हो, जिसने फजा में किसी जगह को पुर किया हुआ हो। तो ये झूठा हुक्म किसने लगाया, कुव्वते वहमा ने लगाया, भाई ये वहम है भाई। तो यहां मुतहय्यिस किस माना में है, जिसकी तरफ हाथ के जरिए इशारा किया जा सके। और असल माना क्या, वो भी मैंने आपको बताया, मुतहय्यिस वो है फजा में जिसका कोई जिस्म हो। क्या होगा, जब वो जिस्म होगा तो वो फजा को पूर करेगी। तो कहते हैं वहमियात जो है ही अलकजाया लती यहकुमु फीहा अलवहमु मिन गैरिल महसूस कियासन अलल महसूस, जिसमें वहम जो है हुक्म लगाता है गैर महसूस जो है उसको कियास करते हुए महसूस पर। कमा युकालु, जैसे यूं कहा जाए, कुल्लु मौजूदिन फहुआ मुतहय्यिज़ुन, हर मौजूद चीज जो है वो मुतहय्यिज़ है यानी उसकी तरफ इशारा हिस्सिया किया जा सकता है, हालांकि यह हुक्म दुरुस्त नहीं है। कौलहु अल मुशब्बहाती ही अल कजाय अल काजिबतु शबीहतु बिस्सादिकतिल अव्वलियति अविल मशहूरति, ये वो झूठे कजाया हैं जो मुशाबे हैं सच्चे कजाया के, अल अव्वलियति अविल मशहूरति, वो सच्चे कजिए जो अव्वलिया हों या मशहूरा। मुशब्बहात, इधर देखिए, मुशब्बहात वो झूठे कजिए हैं जो सच्चे कजियों के मुशाबे हों, वो सच्चे कजिए जो अव्वलिया या मशहूरा है, जो अव्वलिया हैं भाई, जिनमें जो बगैर वास्ते की अकल तस्लीम कर लेती है, या मशहूरा हैं जो तमाम लोगों में मशहूर हैं या खास इलाके या खास फन वालों में मशहूर हैं, उनके मुशाबे होते हैं ये, सूरत के एतबार से या माना के एतबार से मुशाबे होते हैं, हकीकत में ये काजिब होते हैं। तो कहते हैं मुशब्बहात ये वो कजाया काजिबा हैं जो मुशाबे हैं उन सच्चे कजियों के जो अव्वलिया या मशहूरा होते हैं, लिश्तिबाहिन लफ्जीन औ मानवीन, किसी लफ्जी या मानवी इश्तिबाह की वजह से। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, दीवार पर घोड़े की तस्वीर है, आप कहते हैं ये घोड़ा है, और आगे दूसरा मुकदमा मिलाया, हर घोड़ा हिन हिन आता है, नतीजा क्या निकला, ये घोड़ा भी हिन हिन आता है। यहां मुशाबहत सिर्फ लफ्जों के एतबार से है, जो वाकई में घोड़ा हिन हिन आता है उसको भी घोड़ा कहते हैं, जो तस्वीर में होता है उसको भी घोड़ा कहते हैं। यह माना इश्तिबाहिन लफ्जीन औ मानवीन, लफ्जी या मानवी इश्तिबाह की वजह से। वालम तू जान ले अन्नमा ज़कराहुल मुतअख्खिरून फिस सनाआतिल खम्सि इख्तिसारुन मुखिल्लुन वक़द अजमलूहु व अहमलूहु। इधर देखिए, यहां से आगे शारह आपको यह बतलाएंगे कि ये जो मादा कयास की बहस है बहुत कीमती बहस है, लेकिन मुताखिरीन उलमा जो आए उन्होंने कजिया शर्तिया की बहसों में पड़ गए। भाई कजिया शर्तिया उसमें तो एक में मुकदम में भी निस्बत होती है और ताली में भी निस्बत होती है, तो उनकी तफसील के अंदर बड़ा लंबा कलाम कर दिया, हालांकि उसका फायदा बहुत थोड़ा है। और ये जो मादा कयास है इसका फायदा सबसे ज्यादा है, इसकी तरफ इन्होंने बहुत कम तवज्जो की और लापरवाही बरती। तो ए तालिब इलम, आप जो है मादा कयास के लिए खूब मेहनत करना और उसको अच्छी तरह सीख लेना। कहते हैं वालम तू जान ले अन्ना मादा कराहुल मुताखिरून फिस सनाआतिल खम्सी, वो जो मुताखिरीन उलमा ने जिक्र किया है सनाआत खम्सा में, यानी सनाआत खम्सा यानी ये जो पांच कयास है मादे के एतबार से, इनमें इख्तिसारुन मुखिल्लुन, इख्तिसार का माना है इक्तफा करना यानी थोड़ी चीज पर ही कनात कर लेना, मुखिल्लुन खलल डालने वाला, ये वो जो मुताखिरीन ने जिक्र किया है सनाआत खम्सा में, इख्तिसारुन मुखिल्लुन, वो ऐसा इक्तफा है जो खलल डालने वाला है, उस पर इन्होंने इक्तफा किया, ऐसा इक्तफा जो खलल डालने वाला है, यानी बहुत थोड़ी बातें जिक्र की जिससे जहन में और खलल पैदा होता है, बात पूरी वाजह नहीं होती। वक़द अजमलूहु, और तहकीक उन्होंने इसमें इजमाल किया, इजमाल का माना है मुख्तसर करना कलाम को, यानी बड़ा कलाम को इन्होंने मुख्तसर किया। वह अहमलूहु, अहमला का माना है बेतवज्जो ही करना, लापरवाही करना। وَقَدْ أَجْمَلُوهُ وَأَحْمَلُوهُ اور انہوں نے اس میں کلام کو بڑا ہی مختصر کیا وَأَحْمَلُوهُ اور اس میں بڑی ہی لاپرواہی کی مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ اگر باوجود اس کے کہ یہ اہم باتوں میں سے ہے وَطَوَّلُوا فِي الْاِقْتِرَانِيَاتِ شَرْتِيَتِ اور انہوں نے طویل کلام کیا اقترانیات شرطیہ میں قیاس اقترانی شرطی کی اس میں انہوں نے بہت زیادہ لمبا کلام کیا وَلَوَازِمِ الشَّرْتِيَاتِ اور شرطیات کے لوازم میں انہوں نے بڑا لمبا کلام کیا مَعَقِلَّتِ الْجَدْوَى جدوہ کا معنی ہے نفع فائدہ مَعَقِلَّتِ الْجَدْوَى باوجود فائدے کے قلیل ہونے کے اقترانیات شرطیہ اور لوازم شرطیات میں انہوں نے بڑا لمبا کلام کیا مَعَقِلَّتِ الْجَدْوَى باوجود نفع کے کم ہونے کے کہ ان کا فائدہ تھوڑا تھا وَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ كُتُبِ الْقُدَمَ اچھا لوازم شرطیات آیا بھئی یہ میں ابھی بیان کرتا ہوں وَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ كُتُبِ الْقُدَمَائِ اور اے طالب علم تجھ پر لازم ہے عَلَيْكَ کیا ہے اسم فعل تو لازم پکڑ بِمُطَالَعَةِ كُتُبِ الْقُدَمَائِ قدماء کی کتابوں کے مطالعے کو قدیم علماء جو پہلے مناطقہ گزرے ان کی کتابوں کے مطالعے کو لازم پکڑ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءَ الْعَلِيلِ ونجات الغلیلی علیل کا معنی ہے بیمار نجات چھٹکارا پانا اور غلیل بھائی غلیل کا معنی یاد رکھو انتہائی شدید پیاس اس کو بھی غلیل کہتے ہیں اور جو آدمی شدید پیاسا ہو اس کو بھی غلیل کہتے ہیں غین کے ساتھ غلیل بھائی فَإِنَّ فِي تو آپ جو ہیں قدیم علماء کی کتابوں کو لازم پکڑو فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءَ الْعَلِيلِ کیونکہ اس میں بیماروں کی شفا ہے اس میں بیماروں کی شفا ہے آپ متاخرین کی کتابیں پڑھیں گے تو اتنا خلل پیش آ جائے گا کہ گویا آپ کس کی طرح ہو گئے بیمار ہو گئے بھائی خلل میں پڑ جائیں گے اور تکلیف مشکل میں پڑ جائیں گے بات واضح وہ کرتے ہی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو چنانچہ آپ قدما کی کتابیں پڑھیں تو اس سے آپ کا جو یہ بیماری ہے یعنی یہ جو ذہن میں خلل آئے اور اعتراضات آئے ان سے آپ کو شفا حاصل ہوگی وہاں پوری تفصیل ہے فَإِنَّ فِيهَا ان کتابوں کے اندر شفا العلیلی ان میں بیمار آدمی کی شفا ہے وَنَجَاتَ الْغَلِيلِ اور اس میں پیاسے آدمی کی نجات ہے اس کا چھٹکارا ہے یعنی خوب وہاں سے آپ سیراب ہو سکتے ہیں آپ کو اس پیاس سے چھٹکارا مل جائے گا بھائی اور بڑی پیاری عبارت لے کر آئے شارح بھائی اس میں لفظ شفا اور نجات لائے یاد رکھیے یہ شیخ بو علی بن سینا جو ہیں ان کی ایک کتاب کا نام ہے شفا اور ان کی ایک کتاب کا نام ہے نجات بھائی تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ قدما کی کتابیں پڑھیں خاص طور پر شیخ بو علی بن سینا کی شفا اور نجات کتاب کو پڑھیں وہاں آپ کو یہ صناعات خمسہ کی پوری تفصیل مل جائے گی آپ کی خوب تسلی ہو جائے گی بھائی اچھا یہاں لفظ آیا لوازم شرطیات بھائی لوازم شرطیات سے کیا مراد ہے بھائی کیا مراد ہے یہ یاد رکھو لوازم شرطیات جو ہیں وہ یہ کہ ایک قضیہ شرطیہ کے ساتھ بعض اوقات دوسرا قضیہ شرطیہ لازم ہوتا ہے جیسے آپ نے عکس مستوی کی بحث پڑھی کہ اصل قضیہ کے ساتھ اس کا عکس کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا جب کل انسان حیوان یہ صادق ہے تو بعض الحیوان انسان یہ بھی کیا ہوگا صادق ہوگا عکس جو ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اور اصل صادق ہو تو عکس بھی کیا ہوگا صادق اور عکس صادق ہے تو معلوم ہو اصل بھی صادق اور اگر عکس کاذب ہے تو معلوم ہو اصل بھی کیا ہے کاذب ہے تو عکس لازم ہوتا ہے اسی طرح ایک شرطیہ کے ساتھ بعض اوقات دوسرے شرطیہ لازم ہوتے ہیں ان کو لوازم شرطیات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوازم شرطیات کہتے ہیں یہ دو تین سطریں اگر آپ لکھ لیں تاکہ پھر آپ کو یاد رہیں گی بھولیں گی نہیں کام آئیں گی لوازم شرطیات لوازم شرطیہ کسے کہتے ہیں ایک شرطیہ کے ساتھ کبھی دوسرا شرطیہ لازم ہوتا ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں تو یہ دوسرا شرطیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کبھی ایک کے ساتھ دو دو لازم ہوتے ہیں وغیرہ مثلا لکھیے بھائی اوپر لکھ لیں لوازم شرطیہ لکھیے بھائی لوازم شرطیات بھائی لوازم شرطیات مثلا جب دو نسبتوں میں لکھیے بھائی مثلا جب دو نسبتوں میں منع الجمع صادق ہوگا, منع الجمع صادق ہوگا. جب دو نسبتوں میں منع الجمع صادق ہوگا تو ہر ایک کا عین, تو ہر ایک کا عین, تو ہر ایک کا عین ملزوم, ملزوم, اور دوسرے کی نقیز, اور دوسرے کی نقیز لازم ہوگی, لازم ہوگی. یعنی ہر منفصلہ مانعت الجمع, یعنی ہر منفصلہ مانعت الجمع موجبہ کلیہ, موجبہ کلیہ کو دو متصلہ لزومیہ, کو دو متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ. یعنی ہر منفصلہ مانعت الجمع موجبہ کلیہ کو دو متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ لازم ہیں, موجبہ کلیہ لازم ہیں, جن میں سے ایک میں, جن میں سے ایک میں مقدم جو ہے, مقدم جو ہے وہ عین مقدم ہوگا, عین مقدم ہوگا, اور تالی جو ہے, اور تالی جو ہے وہ نقیز تالی ہوگا, وہ نقیز تالی ہوگا. اور دوسرے میں, اور دوسرے میں عین تالی مقدم ہوگا, عین تالی مقدم ہوگا, اور نقیز مقدم, اور نقیز مقدم تالی ہوگا, تالی ہوگا. مثلاً, مثلاً جب یہ قضیہ صادق ہوگا, جب یہ قضیہ صادق ہوگا دائماً, دائماً اما ھذا الشیء, دائماً اما ھذا الشیء شجر او حجر, شجر او حجر. تو یہ دو متصلہ, تو یہ دو متصلہ موجبہ کلیہ, موجبہ کلیہ ضرور صادق ہوں گے, ضرور صادق ہوں گے. نمبر ایک, کلما کان ھذا الشیء, کلما کان ھذا الشیء, کلما کان ھذا الشیء شجرن, شجرن لم یکن حجرن, لم یکن حجرن. نمبر دو, نمبر دو, کلما کان ھذا الشیء, کلما کان ھذا الشیء حجرن, حجرن لم یکن شجرن, لم یکن شجرن. لکھ لیا, دیکھا, یہ ہے لوازم شرطیہ بھائی. ऊपर इबारत क्या आई थी, व तवलु फिल इक्तरानियाती शर्तियती व लवाजिमी शर्तियाती माकिल लतील जदवा, और उन्होंने इक्तरानियात शर्तिया और लवाजिम शर्तियात में बड़ा तवील कलाम किया बावजूद उसके कि उसका फायदा थोड़ा था। और लवाजिम शर्तिया का लफ्ज यहां आया था, मैंने बतलाया लवाजिम शर्तिया किसे कहते हैं कि एक कजिया शर्तिया मानोगे तो उसके साथ मसलन एक या दो और कजिया शर्तिया भी मानने पड़ेंगे, वो उसके साथ लाजिम है भाई। जैसे मानियातुल जमा के साथ दो मुत्तसिला जो हैं वो लाजिम हैं, कौन से? मसलन मैं कहता हूं ये चीज या तो पत्थर है या दरख्त है, तो इसके साथ दो और कजिया शर्तिया भी मुत्तसिला भी लाजिम है। और वो क्या? ये चीज या तो शजर है या हजर नहीं है। और यह यूं कहोगे ये चीज या तो हजर है या शजर नहीं है। तो जहां भी ये मानियातुल जमा आएगा उसके साथ दो मुत्तसिला, जो मुत्तसिला लुजूमिया, दो मुत्तसिला मुजीबा कुलिया भी लाजिम होंगे। तो ये है लवाजिम शर्तिया। ये तो बतौर मिसाल के मैंने एक मिसाल जिक्र करवा दी। हर शर्तिया के साथ इसी तरह बड़ी तफसील बयान की है भाई मुताखिरीन ने कि इसके साथ ये वाला लाजिम है, इसके साथ ये वाला लाजिम है। अगर आप ये मानते हो तो ये भी मानना पड़ेगा, अगर ये मानते हो तो ये भी मानना पड़ेगा। जैसे ये मानियातुल जमा मुनफसिला को मानोगे तो इसके साथ दो शर्तियां मुत्तसिला भी मानने पड़ेंगे। और वो एक में मुकद्दम जो है वो अगर ऐन मुकद्दम है तो ताली क्या है? नकीज ताली होगा। अगर ऐन ताली को मुकद्दम करें तो नकीज मुकद्दम जो है वो ताली आएगा। अच्छी तरह बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।